Rabbi, as an instrument
center
of spiritual enlightenment to the world. And we are watching this live telecast from the Shantra Temples of the Brahmakumaris.
Where
thousands have gathered for the last rites of Adi
Gurusai.
Brother Nirvair offers heartfelt gratitude and thanks to all brothers and sisters of Kamdevi Centers. And we would listen to Sister Neha, who is in charge of Kamdevi Centers, Mumbai, where Dadiji spent her last 4 years
Dadiji,
until her last moment.
Aapki seva ka param subhagya pichle 3 saalon se jo hamare pure Kamdevi sabson ko prapt hua, hum apne aap ko param subhagyashali samajhte hain. Ye 3 saal ki yatra mein हमने ये अनुभव किया कि प्यारी दादी जी ने बाप दादा के साथ साथ रहकर अपनी गहन तपस्या और साधना के द्वारा निमित मात्र शारीरिक लाभ चल रहा था, लेकिन आप शुरू हो गया है. अब आना और जाना यही पक्का करो. बाबा बाबा करते बाप समान बनना है. ये शिक्षाओं को आपने साकार में मूर्तिमंत करके हम सभी को प्रैक्टिकल में बताया. मैं तो पूरे यज्ञ के समस्त भाई बहनों को कहूंगी कि आप सभी का योग बल था. निमित मात्र दादी जी की साकार सेवा के निमित्त हम सभी थे, तो दादी जी को हम इस मौके पर यही श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं कि हम भी बाप समान बन जाए, दादी की शिक्षाओं को धारण करें. तो विशेष हमारे साथ हमारी साथी आशा बहन और समस्त बहनों की ओर से हम दादी जी को यही श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं. ओम शांति.
ओम शांति. सभी जानते हैं दादी जी के आसपास नीलू बहन के साथ साथ हमारे दादा गोपाल भाई भी बहुत टाइम रहे, तो गोपाल जी भी यहां बैठे हैं. वो भी 2 शब्द अपने श्रद्धा के पेश करेंगे.
ओम शांति. 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद मेरा कनेक्शन दादी गुलजार से कमलनगर सेंटर से हुआ. उसको 52 साल हो गए, लेकिन मैं दादी के साथ 40 साल रहा. उसके बाद में मैं नहीं रहा. मेरा जो अनुभव है तो वो दादी जी ऐसे थे जैसे कोई बर्फ का पहाड़ है. उनके पास में बैठते थे तो बर्फ के पहाड़ के पास बैठे हो तो हवा भी नहीं चले तो उसके रेडिएशन से ही आपको ठंडक आ जाती है. जैसे कहते हैं ना कि तुम किस मिट्टी का बना हो, तो दादी जी शायद इस यहाँ के तत्वों की नहीं बनी हुई थी. शिव बाबा ने उनको कोई वतन की मिट्टी और वतन के जल से बनाया हुआ था. मेरे बहुत अनुभव हैं, समय हो गया है. दादी जी को मैं क्या श्रद्धांजलि दूं, लेकिन मेरे तो ऐसा, मैं तो दादी जी के साथ ही हूं और रहूंगा. ओम शांति.
ओम शांति. हमारे सभी मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन सब से निवेदन है वो आगे आ जाएं. पहले पहले
वी वर लिसनिंग टू
अपनी तरफ से
the message of gratitude from Brother Gopal, for whom Dadi Gulzar was a spiritual mother. And he spent 40 years of his time with Dadi Gulzar and his entire family Chandan came to the Brahmakumaris under the guidance of Dadi Kulsa. His own siblings, his mother and father have received so much from Dadiji that there is so much more that the heart wants to say, because it is the learning and a journey of a lifetime which cannot be summed up in few words. He offers his heartfelt remembrance to Dadiji. We proceed further to the final rites of Dadiji. We see Dadi Ratan Mohini ji offering sandal sticks to the fire, to the funeral pyre that has been readied. And more of our brothers and sisters will offer sandalwood sticks to the pyre.
बड़े कठिन क्षण होते हैं जीवन के, श्रद्धा
जब आप अपने प्रियजनों को
आशा दीदी से निवेदन है दो शब्द वो भी।
आज भगवान के घर का श्रृंगार जा रहा है, भगवान भी अपनी इस बच्ची पर पूरा बलिहार जा रहा है। 93 वर्ष की आयु में जिन्होंने महाशिव जयंती के दिन दादी जी ने शरीर छोड़ा, यशु दादी जी, दादी जी की यज्ञ की आदि की साथी
और सदा कहती थी,
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। चंदन की लकड़ी
परंतु A1 रहना है।
इस बार शिव जयंती के दिन 11 तारीख थी,
दादी जी के मुख से
भोपाल भाई भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
आप लोगों से पूछे
11 तारीख थी जो बता रही थी एक और एक, एक मैं और एक मेरा बाबा, और आज है 13 तारीख जो कह रही है 13-13 कहते बाबा मैं हो गई तुम पर बलिहार। संपूर्ण रूप से शिव पर बलिहार जाने वाली आदरणीय
तो आज
दादी हृदय मोहिनी जी के शरीर का ये संस्कार, अंतिम संस्कार।
हम दादी को विदाई नहीं।
दादी जी का जन्म 1928 में कराची में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे उस समय ओम मंडली के रूप में जाना जाता था, आप संपर्क में आई। बचपन से ही योग साधना और साक्षात्कार आपको वरदान में मिले, जैसे पिछले जन्मों की तपस्या आप साथ लेकर आई थी। 1969 से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के देह के त्याग के बाद आपने परमात्मा की संदेशवाहक होने का बड़ा महान पाठ बजाया। हमारी मुख्य मुंबई की बहनें और दैवी परिवार दादी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सारा परिवार आज मौन में अपने हृदय की भावनाएं दादी जी तक पहुंचा रहा है। वो दादी जी जो उड़ चली देह के उस पार, आज श्रद्धा और प्रेम के भावों से हम उनका कर रहे हैं अंतिम संस्कार। ये जीवन का सत्य हम सभी भाई और बहनों जानते हैं, आत्मा देह को धारण करती है और उसे एक दिन देह को त्यागना भी है। जरूरी यह है कि आप इस शरीर के साथ सारे जीवन में कैसे कर्म करते हैं, आप अपनी कहानी कैसी लिखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और दादी जी का चेहरा यदि देखो तो चेहरे पर बयां होती है उनकी जीवन गाथा। कहते हैं 60 की लौकिक आयु के बाद शारीरिक सुंदरता नहीं होती, बल्कि जो आपने आजीवन श्रेष्ठ कर्म और जैसी भावनाएं रखी होती हैं वो चेहरे पर आ जाते हैं। हमारे दादी जी के चेहरे पर बड़ी अलौकिक सुंदरता थी। और चेहरे पर किसकी मोहब्बत बयां होती है, ऐसी रूहानी मस्ती और कहां होती है। शिव बनता है जब परवाना तो दादी हमारी क्षमा होती है। दादी पर स्वयं ईश्वर बलिहार किया, आप के तन को आधार बनाया, विश्व परिवर्तन के महान कार्य में। राजयोगिनी दादी हृदय मणि जी पिछले वर्ष इसी मास में जब राजयोगिनी दादी जानकी जी ने अपनी देह का त्याग किया था, उन्हें सर्वसहमति से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया गया था। हमारी दादियां हमारे लिए कोहिनूर हैं, बहुत कीमती हैं। और वर्तमान समय से आदरणीय राज योगिनी रतन मोहिनी दादी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका का कर्तव्य निर्वाहन करेंगी। हमारी और वरिष्ठ बहनें, हमारे भाई, ये चंदन की आप जो हार, ये लकड़ियां देख रहे हैं, ये सुगंधित करेंगी वातावरण को, लेकिन इनकी सुगंध वैसी नहीं है जो सुगंध हमारी दादी की दिव्यता, उनके प्रेम, उनके व्यक्तित्व में थी। ये केवल एक सूचक है। दादी जी की अंतिम शैया को मैं देख रहा हूं, उसमें से भी जैसे एक दिव्य आभा निकल रही है, एक प्रकाश निकल रहा है। दादी जी के शरीर के वो तत्व हैं जिनकी पावनता आज जब इन पांचों तत्वों में मिलेगी तो ये तत्व अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से इन तत्वों भी पावन करेंगे। इन तत्वों के संग का रंग जो बाह्य तत्व हैं उनको लगेगा और एक बहुत ही श्रेष्ठ परिवर्तन हो, ऐसी हम आशा करते हैं।
As we pay our last tributes to Dadi Gulzar, there are millions of us who would want to be present at this moment. But physically, even though we might not be here, but with our hearts, when we see these glimpses of the last rites being performed, may you remember to radiate your love and your remembrance and offer gratitude to Dadiji for her endless service. By doing so, we become present by our hearts, and that is what matters. The senior sisters and brothers of the Brahma Kumaris and Swamiji, clad in orange, offers his tribute to Dadiji. Raj Didi from Kathmandu Nepal also offers the final tributes. Sisters from Odisha, Kamlesh Didi from Katak, brothers and sisters who served Dadiji during her last stay in Bombay, and several others have offered their final offerings to the chariot of Dadi Gulzar. Asha Didi very beautifully mentioned that this is not the departure of Dadiji from our lives. This is just a beginning of a new chapter where we say farewell to the chariot of Dadiji, but not to her, for she will always remain with us in our hearts and our souls. For our lives have today been touched forever.
शांतिवन में आज ईश्वरीय परिवार अपने श्रद्धा के सुमन दादी जी पर अर्पित कर रहा है और पांचों महाद्वीपों में सभी देशों के सभी नगरों में जहां भी बाबा के बच्चे हैं अपने प्रेम भरे श्रद्धा सुमन वहीं से भेज सकते हैं। भाई बहनों, मन में एक बड़ी प्यारी शक्ति होती है, संकल्पों में एक बड़ी शक्ति होती है कि एक ही क्षण में ये सात समुद्र पार पहुंच सकते हैं। तो सारा परिवार अपने अव्यक्त रूप में यहां उपस्थित होकर अपनी प्यारी दादी गुलजार जी, हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, आप उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। यूके का देवी परिवार भी अपने प्रेम भावों से चंदन की लकड़ी, दादी जी के पंच भूतों से बने भौतिक शरीर पर अर्पित करते हुए और धन्यवाद कहते हुए ये सारा ईश्वरीय परिवार, शुक्रिया दादी, शुक्रिया। बाबा ही जिनकी दुनिया, बाबा ही जिनका संसार, सर्व का हृदय मोहिने वाली प्रिय दादी गुलजार। ईश्वरीय नेह को स्वयं में समाकर, सर्व गुण शक्तियों से स्वयं को सजाकर, देखो उड़ चली है उस पार सर्व का हृदय मोहिने वाली प्रिय दादी गुलजार। मन हृदय नेह जीवन में शिव को बसाया, इस जगत का और उस जगत का सार सुनाया, मन वचन कर्म से किया सबका उद्धार, सर्व का हृदय मोहने वाली प्रिय दादी गुलजार। जीवन पावन निर्मल अध्यात्म का दर्पण, एक के स्नेह में लीन एक को ही समर्पण, जिनके साकार रूप से प्रत्यक्ष हुआ निराकार, सर्व का हृदय मोहने वाली प्रिय दादी गुलजार। साउथ इंडिया से हमारी बहनें, भगवान के हाथों से लिखी दिव्य कहानी, हर बोल कल्याणकारी हर बोल वरदानी, आज हृदय की गहराइयों से सारा ईश्वरीय परिवार करता है नमस्कार, सर्व का हृदय मोहने वाली प्रिय दादी गुलजार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ईश्वरीय परिवार सदा आपका आभारी रहेगा। वहा दादी वहा, वहा दादी वहा, हर हृदय सदा कहेगा, सदा याद आएंगे आपके ममता और उपकार, सर्व का हृदय मोहने वाली प्रिय दादी गुलजार। बाबा ही जिनकी दुनिया, बाबा ही जिनका संसार।
Such poetic is this departure that one should find words, and yet one is at loss of words to pay tributes for our heart is full of gratitude and love. The senior brothers of Brahma Kumaris, Brother Raju from Murli department, senior sisters, Dr. Banarsi Lal Sahib from the medical wing, sisters from Madhuban, sisters from Bombay, Sister Deepa from Vilipale, Sister Jayanti, the European Director of the Brahma Kumaris, would offer final tributes from all of us who are living overseas on our behalf. Farewell to Dadi in your current form. There are so many who have travelled from so far. Sister Jayanti travelled just yesterday to arrive in time to offer her final farewells to Dadiji. From different corners of the country, from every nook and corner, for Dadiji has travelled and spread the fragrance of spirituality to the different corners of the world. For a more befitting farewell, where else could we look? For you have been an example where we do not find an equal.
भाई और बहनों, शब्दों की एक सीमा होती है, लेकिन अपने मन का प्यार मौन रहकर भी हम दादी को व्यक्त कर सकते हैं। और सदा ही हमने दादी की प्यारी मुस्कान में, उनकी हंसी में एक बड़े गहरे मौन को पाया है। और बड़ी बाखूबी से दादी जी ने ईश्वरीय कर्तव्यों को और ईश्वरीय मोहब्बत को निभाया है। कोई दादी आपको हृदय मोहिनी लिखे, कोई आपको गुलजार लिखे, लेकिन आज हमारा हृदय चाहता है हम आपको ईश्वरीय प्यार लिखें। प्यार से भरी, शांति से भरी अपनी वाणी, अपने भावों से सदा शिव को दर्शाने वाली हमारी दादी हृदय मोहिनी जी को, हमारे सभी उनसे प्रेम भाव रखने वाले भाई बहने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, ऐसा लग रहा है वो सामने जहां अव्यक्त आरोहण लिखा है, दादी सबको अपना प्रेम, अपना विश्वास सबको दे रही है, और ये कह रही हूं जैसे कि आप सब में भी ईश्वरीय परिवार के प्रति उतना ही प्यार हो, सेवा के प्रति उतना ही प्यार हो, विश्व कल्याण के कार्य के प्रति उतना ही प्यार हो, बाबा के लिए भी उतना ही प्यार हो, जो आज आप सब मुझे इतनी प्यार भरी शुभकामनाएं दे रहे हैं मेरे इन गुणों के लिए। और कह रही हूं ये ईश्वरीय प्यार आप में भी उतर सकता है, बस अपने पे एतबार तो कर, और आप वास्तव में प्यार ही हो, बस अपने सच्चे स्वरूप का दीदार तो कर। दादी जी के समान यदि हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं, जो सत्यम शिवम सुंदरम की तरह प्रेममय, आनंदमय, गुणमय, तो हमारे जीवन में से भी वैसी ही प्रेम की धाराएं प्रवाहित होंगी जैसी आजीवन हमने दादी हृदय मोहिनी जी के जीवन से देखी हैं।
As we pour tributes These are few final moments of the last rites of Dadi Khalsa. Sisters and brothers from different corners of country have offered final tributes. Now, as we light the element of fire, we remember the Supreme Light who has been the light of our lives. He has been the sun. He has been the source. And He has been the fountain of eternal youth and life. As Dadi Ratan Mohini Ji, Brother Nivair, Sister Neelu, Dadi Ishu Ji, Asha Didi, and all of us offer our last tributes and offer this body to fire, an element that always looks up to the sky. We will remember that Dadi, all through her life, has taught us to look up to that Supreme Light, who was our eternal support, who is our everlasting companion, for with Him we are never alone. As Dadiji has attained her angelic stage, she gives this clarion call to all of us that it is time for each and every one to look up to that light. For this fire is just an image of where our journey truly lies. And as we sound this precious mantra of Om Shanti, that reminds us of who we truly are. We, the eternal sources of light. We, the beings of peace. Would remember and offer ourselves to the undying spirit of flames of eternity.
Agni tattva mein vilin kar rahe hain. हमारी नीलू बहन जी के लिए हम रेडी हैं. आपने प्लीज पीछे हट जाए, दादी जी को पीछे ले लें प्लीज. प्लीज सहयोग दें, सभी गाइड प्लीज ध्यान दें. दादी जी के पार्थिव देह को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया है. सभी एक मन के साथ बोलेंगे विदाई दी शांति
सदा ही कर्मेंद्रिय जीत बन. उस सच्ची आध्यात्मिक मलिका ने इस शरीर पर शासन किया,
हम ब्राह्मणों की पहचान ही
शासन किया. उनको विदाई देने के ये क्षण सदा जीवन में राग वैराग से ऊपर, ना जीवन में कभी शिकवा ना शिकायत, हर हाल में दादी थी सदा राजी. इसलिए जीत ली उन्होंने इस जीवन की बाजी. ये अग्नि, ये चंदन की सुगंध चारों ओर बिखर बिखर कर वातावरण में संदेश दे रही है कि जीवन हमारा सुगंधित हो, जीवन हमारा रोशन हो. सभी ओम की ध्वनि के साथ जीवन की इस यात्रा के परम सत्य के साथ दादी जी को विदाई देने की ये क्षण होगी. फिर अगले कल्प मुलाकात इसी नाम इसी रूप में फिर होगा ये प्यारा सा परिवार, और हम देख पाएंगे फिर दादी जी को इसी सुंदर दिव्य आभा के साथ। दादी जी के जीवन से जीवन के सबसे सुंदर रंग बिखरे, लाखों ही जीवन आपसे निखरे, आत्मा और शरीर का सदा भेद बताती, बड़े गहरे राजों को सुनाती, सबसे मिलती उजाला बनके, ममता भरा दुशाला बनके। दादी जी स्वयं भी अव्यक्त रूप से अपनी इस देह को, जिसे उन्होंने सदा योग अग्नि में तपाया, आज देख रही होंगी कि उनके तन को अग्नि को समर्पित कर दिया गया है। भाई और बहनों, तपस्या शब्द हिंदी के शब्द ताप से बना है, ताप का अर्थ होता है अग्नि। पानी सदा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, लेकिन जब आप पानी को अग्नि पर रखते हैं तो वो आकाश की ओर उठ जाता है। इसलिए कल्प भर जो आत्मा सतयुग से सदा नीचे नीचे आती है, फिर जब उसे योग भट्टी अग्नि ताप पर रखा जाता है तो फिर अपने संपूर्ण स्वरूप में आ जाती है। दादी हृदय मोहिनी जी का संपूर्ण जीवन योग की ताप का तपस्या का प्रतीक है। कैसे आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है, कैसे धरा से आकाश तक उठा जाता है, कैसे दुनिया के विस्तार से अपने सार बिंदु स्वरूप में समाया जाता है, उस स्वरूप में आया जाता है। शांतिवन का ये पावन परिसर, शक्ति भवन के आगे ये स्थल जहां दादी जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार, यहीं पर उनका समाधि स्थल, उनकी स्मृति का स्थल बनाया जाएगा। ईश्वरीय परिवार को अपना उजाला देकर सैकड़ों ही दिव्य शक्तियां जो उनके समान है आज, उन्हें तैयार कर अपनी अग्रिम यात्रा की ओर प्रस्थान करेंगी दादी। और हम बड़े नेह से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, समर्पण से, सम्मान से अपनी दादी को विदाई देते हुए, और ऐसा लग रहा है कि वो सामने अव्यक्त रूप में मुस्कुरा रही हैं और हमसे बड़े प्रेम से विदाई ले रही हैं।
This is an end of an age. For what we have witnessed today would only come back in the next cycle of time. For what we see today with these eyes will remain etched in our memory for time immemorial. For always will this personality shine in our hearts with an illuminance of glory that is equal to God. As we see the fire that travels upwards all the time, this reminds us the fire of yoga, a fire that had always been lit up in the mind of Dadiji, for she guided millions on this path of yoga, connected them to the divine, and became an instrument of this connection. And today, as we see the fire take control of the body. It brings the experience that where we really should look up is where the fire shows us to. The light that emanates from this funeral pyre, may it remind us of Dadiji, of her teachings, of her love, of her unconditional surrender to the One. At the very place where the funeral is taking place, would build a memorial to Dadiji. Few hours from now, we will all offer bhog to Bap Dada in the remembrance of Dadi. And we would listen to the godly versions that we have heard from Dadiji for so many years. In her own words, she once said that if you have God as your companion, there is no task that is impossible for you. For always remembering that God is my companion and I am His instrument, all tasks get done easily. With the ease with which, Dadiji, you have traveled in your life, so be it a easing light to many. For you will be the light of our lives, of showing path to those who come later and forever on. For this angelic departure is not a departure, but of an eternal journey.
आत्मा अविनाशी है, ये सृष्टि का चक्र भी अविनाशी है, और अपनी अग्रिम यात्रा पर हमारी दादी को प्रेम भीनी विदाई। सदा दादी में सबको ममता भरा रूप नजर आता, कभी दिव्य देवी के रूप में नजर आती, तो कभी शक्ति के रूप में, तो कभी कभी तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का, सदा शिव का प्रकाश पुंज आप में नजर आता। शरीर में भृकुटी रूपी तख्त पर बैठकर आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करती है और अपना फैलाव करती है, एक विस्तार करती है। जो साधारण मानव होते हैं वो सदा परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनकी ऊर्जा सदा बाहर रहती है, लेकिन जो योगी हो जाते हैं, स्वयं में स्थित हो जाते हैं, स्वयं के सत्य स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, वो भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान होकर कार्य करते हैं और वो सच्चे बादशाह हो जाते हैं। हमारी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी सदा एक अध्यात्म की मलिका रही, सदा स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित होकर इस जीवन रूपी नाटक में अपना इतना अच्छा किरदार बजाया कि आज उनके लिए वो शेर याद आ रहा है कि इत्र से खुशबू तो कभी भी आ जाती है, बात तब है जब खुशबू तेरे किरदार से आए। शांत भी होती तो खुशबू अध्यात्म की, प्रेम की उनसे बिखरती। वाचा में भी आती कुछ कहती तो भी वो एकांत, वो शांति, वो मौन उनमें सदा नजर आता। ये संदेश है हम सबको कि अव्यक्त में भी बात हो सकती है, शांत रहकर मौन रहकर भी मुलाकात हो सकती है। दृष्टि देती तो हम उड़ जाते उस नील गगन के पार। हमेशा कहती अपनी वाणी बहुत प्यार वाली रखो, शांत रहो, एकांत रहो, मौन में रहो। और शायद दादी जी को ये सबसे प्रिय था, तो आज शायद ये संदेश है दादी जी का हम सबके लिए कि ईश्वर की महिमा को सुनाना हो तो बोलो, वरना बोलने की जरूरत क्या है। कोई प्यार का, शांति का गीत गुनगुनाना हो तो बोलो, वरना बोलने की जरूरत क्या है। कोई कार्य परवान चढ़ाना हो तो बोलो, वरना बोलने की जरूरत क्या है। किसी को मौन का मार्ग दिखाना हो तो बोलो, वरना बोलने की जरूरत क्या है। सदा मन मना भव एक शिव की यादों में समाई, और सबको आध्यात्म की दादी ने उजली राह दिखाई। ऐसी प्यारी दादी जी को आज हृदय से वंदन। सारा ईश्वरी परिवार सारे भारतवर्ष में, यहाँ के सभी नगरों से, गांवों से, विश्व में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मिडल ईस्ट, सारा ईश्वरी परिवार, अफ्रीका, आज दादी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि और विदाई दे रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो हमारे बीच से चली गई हैं, क्योंकि जो मन को प्रिय होते हैं, जो आपके हृदय को प्रिय होते हैं और जिनसे रूह का नाता होता है, वो सदा आपके दिल में बसे रहते हैं, सदा साथ होते हैं। दादी जी, आप हमारे साथ थे, साथ हो, सदा साथ रहोगे।
As we see these final moments, are a gentle reminder to each one of us that you should not always be using your words. There could be a befitting reply in silence, for often in silence we offer more than what words could ever be. For all her life, Dadiji has been an embodiment of that peace. For when she spoke, all ears would turn to her, all eyes would look up to her. And today, when we offer our gratitude and farewell to Dadi, may we do so with a moment of silence, for we allow that light to shine through our eyes. May that light shine in the windows of our soul, for it is that light that is everlasting and eternal. from different nooks and corners of country and from elsewhere in the world, from all the continents today. Tributes, our remembrance of Dadi would shine for what we offer today is more than gratitude, for we know that we are forever indebted, for we could never repay back of what you have given. But if we do want to give back something in return, we certainly can, by becoming embodiments of what she was, what she has taught us. For we become messengers of God, instruments of divine, just like she was. For that has been the purpose of her life. For that has been her every breath. For that has been every moment. For that has been everything that she has done. And as we come to the final chapter of a glorious life, it reminds us that there is a huge task, a task of world transformation, for which we all were inspired and chosen, for our upliftment and for the upliftment of the world, for the transformation of the world. This messenger of the divine served, toiled all through her life, and with always carrying a smile on her face. Elsewhere, Dadi once said that make your head an ice factory and there should be a sweet factory in your heart, for you would always remain cool-headed, but if you have sweet words coming out of your heart, you would always be a friend to the world. And today, we would say that the world has lost one such friend who will forever be missed. But then I would rephrase myself and I would say, friends, that friendship is never lost, for the journeys that we have had together, for the times that we have spent with her, for the inspirations that we have received. The light will never go out, for the light shall always remain, and forever shall it shine.
ईश्वरीय परिवार बड़ा भाग्यशाली है कि ऐसी प्यारी दादी का, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा का साथ मिला, और सौभाग्य और भी है कि दादी जी की क्लासेस, दादी जी के अनुभव, दादी जी ने जो पाया वो हमारे पास आज भी सुरक्षित है वर्तमान समय और आने वाले समय में लाखों करोड़ों भाई बहने उससे लाभ लेते रहेंगे। दादी अपनी क्लासेस में अपने अनुभव सुनाते हुए अक्सर कहती कि जब बाप दादा उनमें प्रवेश करते हैं तो बड़ी स्वीट साइलेंस का अनुभव करती हैं, और आज भी हमारी दादी साइलेंस में है। विदेही बनने का अभ्यास उन्होंने आजीवन किया, और आज भी दादी विदेही स्थिति में हमें निहार रही हैं। आज भी दादी हैं साक्षी, आज भी दादी हैं अव्यक्त, सदा अपने अनुभवों में अध्यात्म और जीवन के सत्यों को समझने का हम सबको इशारा देती। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य आज हमारे सामने है कि जब कोई भी कुछ भी साथ नहीं होता, जब आप इस देह को भी त्याग देते हैं, तो भी आपके साथ आपके अनुभव होते हैं, और आपके साथ होता है परमपिता परमात्मा परमेश्वर सदाशिव। तो क्यों ना उन्हें सदा जीवन में साथ रखकर चला जाए। और यदि जीवन में आप सदा श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, श्रेष्ठ मनोवस्था से श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगे, सदा मन से बुद्धि से ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, तो यदि ये दोनों साथ हैं, तो फिर तो आप सदा यही कहेंगे कि तुम साथ हो तो दूर किनारा क्यों समझूं। दादी जी बाबा के साथ के अनुभव बहुत प्रेम भाव से सुनाया करती थी। कहती थी ब्रह्मा बाबा से उन्होंने बचपन में बड़ा प्यार पाया, और उन्होंने बाबा ने उन्हें बहुत बादाम और मिश्री खिलाया, तो वैसी ही मिठास भर के सदा सबको भी नरिश करती रही। सबके जीवन में मिश्री की मिठास, मधुरता की मिठास देती रही दादी हमारी हृदय मोहिनी जी। बहुत ही बाल्यावस्था में जब वो 8 साल की थी, तो उन्हें साक्षात्कार होने लगे थे। उन्हें मालूम भी नहीं था कि ये किसके साक्षात्कार हो रहे हैं। 8 वर्ष की अवस्था में उन्हें सबसे पहले श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने अपनी माता जी को बताया, तो वो समझ ना पाई और घर में से बहुत सारी मूर्तियां ले आई जो श्री कृष्ण की थी, राम की थी, और जो देवी देवताओं की मूर्ति थी। लेकिन जो उन्होंने साक्षात्कार किया था श्री कृष्ण का, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण का, वो तो बहुत दिव्य रूप का किया था। तो माता जी ने जब मूर्तियां सामने रखी तो पूछा कि किसको देखा, तो कहने लगी कि ये नहीं, जिसको मैंने देखा वो बहुत सुंदर है। फिर श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए जो पांव के ऊपर ऐसे पांव रख के मूर्ति होती, उसको देखकर बोली कि वो लगभग ऐसा था। तो माता जी ने कहा कि तुम्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है। उसके पश्चात कुछ समय के लिए उन्हें घर जाना पड़ा, फिर वो ओम निवास में बोर्डिंग में आ गई। बोर्डिंग में बाद में बाबा बच्चों से बहुत सारे योग के अभ्यास करवाते थे। एक बार बाबा ने बच्चों को 7 दिन निरंतर मौन में रहने को कहा। छोटी सी आयु और मौन रखना बच्चों के लिए सहज नहीं होता। उस समय पहली बार दादी जी ने अव्यक्त वतन में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखा और बताया। सूक्ष्म वतन का पाठ तब से खुलना शुरू हुआ। अव्यक्त वतन को तब से जाना कि एक सूक्ष्म जगत भी है, और उस सूक्ष्म जगत में भी बहुत सारा कार्य किया जा सकता है। उसकी अनुभूतियों से बहुत आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है, बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ सजाया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो ऐसे हमारी दादी जी शायद पिछले जन्मों से ही बहुत तप और योग की साधना की सिद्धि लेकर आई थी, क्योंकि जो अनुभव योगियों को दशकों सदियों में नहीं होते, वो अपनी बाल्य अवस्था में ही उन्होंने इतनी सहज किए और स्वतः किए। दादी जी की यादों और स्मृति का एक बहुत ही सुंदर गीत तैयार हुआ है, जिसे भ्राता हरीश मोयल जी ने गाया है, दिल्ली ORC में सेवारत बीके सपना बहन ने उसे लिखा है। आइए पहले उस गीत को सुनते हैं, और साथ ही परसों से जो दादी की ये सारी यात्रा रही, अंतिम यात्रा में कैसे उन्हें मुंबई से लाया गया, कैसे उनकी परिक्रमा चारों धामों की, मधुबन माउंट आबू की यात्रा, वो सब भी आज हम कुछ दृश्य इसके पश्चात देखेंगे।
हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार, हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर, शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर, साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर, चले गए हम सब से दूर, तुम बिन अब संगम है अधूरा, तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है, तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है, तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है, कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादे जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार, अलविदा आपका दादे जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो, बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो, हम सब की आप मुस्कान हो, भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे, गए आज हम जैसे हार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार।
माँ की हर दुआ कबूल है, इंसान माँ को नाराज करना तेरी भूल है, वैसे तो दादी कभी नाराज नहीं होती।
This was a special song by Brother Harish Moyal in Bombay. The words of the song were written by B.K. Sapna in ORC. These clippings brought us such rush of memories that we have from Dadi. All that her life has been, the eternal source of joy that she was and she is for us. She says it is only when our features and behavior reveal the one who is teaching us that we can call ourselves a teacher. Teaching doesn't happen just at a time of giving a class or doing service. As delicate times come closer, we won't have time to speak, and people will not have time to listen. Service will be done through face, through our loving drishti. And this attainment is what she was an embodiment of. For all of us have seen her. Those of us who have had the fortune of meeting us would know that just by the being of Dadi, so many souls would be lit up for the light that she was, would in a moment spread all around. Your friend, is your needs answered? For she is your friend. She is your field which you sow with love and reap with thanksgiving. For she is your board and she is your fireside. For you come to her with your hunger and you seek her for peace. When your friend speaks, you hear not the nay in your own mind, but you do the withhold the I. For when your friend is silent, your heart ceases not to listen to the heart of a friend. For without words, in friendship, all thoughts, all desires, all expectations are born and shared with the joy that is unclaimed. When you part from your friend, you grieve not, for that which you love most may be clearer in the absence of the friend, just as the mountain to the climber is clearer from the plain. And let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit, for love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not love, but a net cast forth, and only the unprofitable is caught. And as we see that Dadi, in her physical form, has departed, we see the glimpses of Dadi's last journey, the bringing of Dadi's physical chariot to Mount Abu. The aircraft carrying Dadi's body arrives at the Manpur airstrip, where the Brahmin family receives Dadiji's body, coffined, wrapped in the flag that Dadi has unfurled millions of times during her lifetime. The flag of Shiv Baba wrapped over her coffin, her final journey as the body arrives to Shakti Bhavan, to Dadi's residence in Shantivan. Brothers and sisters of Madhuban receive Dadi's body to her residence. We take you to different glimpses of the journey, the last journey of Dadiji. These are the glimpses of Shantivan, where in the conference hall, brothers and sisters paid floral tributes. And at the same time, you see the final rites of Dadiji's departure. In about an hour's time, we will all offer bhog to Bab Dada and to sweet Dadiji. And we will listen to the divine message. These are the glimpses of Dadiji's body's last journey, where her body rests in the state of laying, where Munni Didiji offers floral garlands to Dadi and the senior brothers and sisters of Madhuban, offer their tributes to Dadi.
देखिए कितनी जल्दी ये तत्व तत्वों में विलीन होने लगते हैं और पीछे रह जाता है वो चैतन्य, वो अविनाशी जो सदा है, सर्वदा है, जो देह को धारण करता है, देह के साथ बचपन, युवा, वृद्ध अवस्थाओं में से शरीर के साथ गुजरता है और फिर इस परिवर्तनशील देह को, इन तत्वों को त्याग कर आगे की यात्रा की ओर चल देता है। वो चैतन्य, वो नूर, वो जो शिव का ही, शिव जैसा ही सुंदर स्वरूप है, हम सब आत्माएं सब इसी यात्रा से गुजरती हैं। आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी अपने अनुभवों में कहती कि जब वो बाल्यकाल में थी तो बाबा कहते बच्चों से प्यार से मिलके, दादी से मिलके, कि ये बच्चे मेरे विश्व परिवर्तन में सहयोगी हैं। बाबा ने सदा बच्चों में विश्व परिवर्तक का रूप देखा। बाबा कहते मेरा हर बच्चा कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है। घर घर तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन हो फुलवारी, मेरा हर बच्चा है विश्व का कल्याणकारी। और दादी भोलेपन में कहती कि बाबा कहते थे हम सुन लेते थे, हम इतने छोटे थे कि उस समय ये भी हमें नहीं पता था कि विश्व क्या है, लेकिन बाबा ने सदा बड़ी ऊंची नजर से देखा बच्चों को, दादियों को शक्ति स्वरूप बनाया, सदा उन्हें कभी ठाकुर तो कभी देवता कहकर संबोधित किया। बाबा की वो दृष्टि, बाबा की वो ऊंची नजर देखिए हमारी दादियां, हमारी दादी हृदय मोहिनी जी इस विश्व में क्या कार्य कर जाती हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने बच्चों को किस नजर से, किस ऊंचे नजरिए से देखना चाहिए। पेरेंट्स, माता पिता बच्चों को अपने वाइब्रेशन से, अपनी ऊर्जा से नरिश करते हैं और वो ऊर्जा जीवन में बहुत बड़ा कार्य करती है। सदा दादी भी सर्व बच्चों से बाबा की तरह प्यार से ही मिलती, सदा उन्हें ऊंची नजर से देखती। दादी कहती कि बाबा सदा कहते कभी ना नहीं कहनी है कि ये मुझे नहीं आता है, सदा करना है और सीखना है, बस कदम बढ़ाएं और शुरुआत करें, क्योंकि इंतजार वो पिंजरे की कैद है जो कभी हटती नहीं। अपना आत्मदीप जलाना, किसी के भरोसे रात कटती नहीं और तकदीर चलकर हासिर होती है, तकदीर खैरात में कभी बढ़ती नहीं। पुरुषार्थ से इस जीवन में और आगे के लिए बड़ी ऊंची श्रेष्ठ प्रारब्ध को बनाया हमारी आदरणीय दादी जी ने। भाई बहनों, यदि प्राप्ति बाहर की है तो कदम बाहर की ओर बढ़ाना होगा, यदि प्राप्ति अंतर की है, अलौकिक है, तो अंतर की ओर कदम बढ़ाना होगा, अपने सत्य स्वरूप की ओर।
as we offer few glimpses of the journey Dadi Gulzar's final journey, where her body was taken to Mount Abu, to the campus of Pandabhavan Gyan Sarovar Global Hospital, and the citizens of Mount Abu were also offered a final opportunity, a final glimpse of her life, a life lived to the fullest. As we see the chariot of Dadi arriving to the gates of Gyan Sarovar, the brothers and sisters of Gyan Sarovar eagerly waiting to pour their hearts out and to offer their heartfelt gratitude. In their minds, the sweet memories of Dadiji. Dadiji's body arriving at Dadi cottage in Gyan Sarovar, where the brothers of Gyan Sarovar carry the body of Dadiji on their shoulders, offering their love and respects for the final time. For Dadi, you have walked through these gates. For you have walked through these streets. For you have made these gardens fragrant with your presence, that today the valleys of Abu, the flowers of these gardens, offer their presence as a mark of respect to you. The Baba's room and Dadi's cottage in Gyan Sarovar, the same Dadi's cottage where Dadi has stayed in the same very building on several occasions, where brothers and sisters from overseas have had the fortune of meeting Dadi. For she showered unlimited love and sustenance to each one of us. Few of the glimpses from Gyan Sarovar, where tributes were offered to Dadi in the Gyan Sarovar campus.
Oh.
स्क्रीन पर आप दादी जी का ये अंतिम यात्रा का, उनकी भौतिक देह का अंतिम संस्कार देख रहे हैं, और नीचे की ओर कल 12 तारीख के ये ज्ञान सरोवर का दृश्य है, जहां सभी भाई गुलजार को, जिसमें सारे जगत के पुष्पों की खुशबू है, अपने दो हाथों में भर के, चंद फूलों को भर के स्नेह भरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी मेरे पास बहुत ही सुंदर कविता मेरे हाथ में है, दादी जी के लिए किसी ने लिखी है, जो मैं आपसे शेयर करता हूं। एक अलौकिक आभा, जीवन सदा सादा, वो नूरानी नूर तुम्हारा ईश्वर की याद दिलाता, अधरों पर मुस्कान लुटाती दिव्य वरदान, वो शिक्षाएं आपकी हमारा जीवन बनाता, हमेशा खिलती रही खुशियों की टोली, बाबा की वो मीठी प्यारी सी हमजोली, हर बोल आपका खुदाई जादू भर जाता, सानिध्य में आपके हर फूल मुस्काता, स्पर्श से तुम्हारे हर कली खिलती, हर श्वास में तुम्हारे शिव की याद बसती, मरहबा है हम तुम पर स्वयं भाग्य विधाता, ओ दादी तुमसा कोई कहां मिल पाता। किसी ने बहुत प्यारी ये पंक्तियां दादी जी के लिए लिखी हैं। हर कोई अपने मन के भाव प्रकट कर रहा है, कोई शब्दों से, कोई गीतों से, कोई भावनाओं से, कोई पुष्पों से, कोई अश्रु की धाराओं से। प्रेम कैसे भी बह जाता है, प्रेम वो शक्ति है जिसका इजहार हो ही जाता है। दादी जी के रथ को आप ये जो नीचे दृश्य देख रहे हैं, ये कल का है।
सकते हैं और कोई नहीं, वे ही करवा सकते हैं किसी मनुष्य आत्मा में, धर्मात्मा में, महात्मा में ये ताकत नहीं कि लाखों को ऐसा जीवन जीने के लिए उत्साहित करें, प्रेरित करें, परंतु शिव बाबा ने ये कार्य प्रैक्टिकल में किया है। दूसरी बात, आज दिन तक सबको यही कहते आए कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फलाने की आराधना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए आदि आदि। किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि आप स्वयं ऐसा बन सकते हैं। मनुष्य से देवता बनना ये जीवन का लक्ष्य है, ये चीज किसी ने भी नहीं सिखाई। ये सिद्ध करता है, अनुभव कहता है, ये कार्य शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, परमात्मा का ही ये कार्य है। इसी रीति से जब शिव बाबा को याद करने बैठते हैं, तो मैं अपना एक अनुभव जो योग की स्थिति में हुआ, मुझे दिव्य दृष्टि का अनुभव नहीं है, साक्षात्कार का अनुभव नहीं है, परंतु ये अनुभव अवश्य है। एक बार योग में बैठी थी, बाबा ज्योति बिंदु का इतना अच्छा क्लियर अनुभव हुआ, जो इस समय बोलते वक्त भी वो मेरे सामने ताजा है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जो उस समय मैंने किया, वो अभी भी तरोताजा है। इसी रीति से प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी हैं, ज्ञान इतना निराला है, इतना चैलेंजिंग है, ऐसा ज्ञान, आत्मा के बारे में इतना स्पष्ट ज्ञान, परमात्मा के बारे में इतना स्पष्ट ज्ञान, इस सृष्टि चक्र के बारे में इतना स्पष्ट ज्ञान, ये ज्ञान जो न कभी पहले कहीं था और न ही शायद कभी होगा, प्रायः लुप्त हो जाता है। तो ज्ञान के आधार से भी ये अनुभव कहता है, ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। मैंने ज्ञान के आधार से प्यारे बाबा को पहचाना। और शिव बाबा ने अव्यक्त रूप से भी, साकार रूप से भी और अव्यक्त रूप से वो एक हैं, इसका बहुत क्लियर अनुभव मेरे पास यूं रहा। एक बार शिव बाबा ब्रह्मा रथ में जब थे तो सम्मुख देखकर बहुत मीठी पावरफुल दृष्टि देकर कहा, सदा याद रखना जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। और जब मैंने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त रूप से मुलाकात की, तो पहली मुलाकात में बाबा ने जो लास्ट मुलाकात में कहा था वो पहली मुलाकात में लगभग रिपीट किया कि बच्ची याद रखना तुम्हें अनेकों को आप समान बनाना है। और मैं पाती हूं कि उन पोजीशंस पर बाबा ने रखा जहां देखने वाले एक नहीं अनेकों हैं। इतना क्रांतिकारी जो कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाने का, वह है निर्विकारिता से। देह अभिमान पाप का मूल है, देही अभिमानी अवस्था नई दुनिया की शुरुआत का बीज है। वे बीज शिव बाबा ने बोए हैं और आज इतनी संख्या में निर्विकारी आत्माओं को जिनका जीवन बदला है, परिवर्तित हुआ है, इन आंखों से हम देखते हैं, अपने निजी जीवन को हम देखते हैं, तो महसूस होता है ये कार्य शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। और शिव बाबा ने कदम कदम पर बहुत मदद की है और करते हैं। जो ख्याल और ख्वाब में नहीं होता, जो कभी सोचा नहीं होता, जो कहीं संकल्प में गौण रूप से पड़ा हुआ होता है, मैं देखती हूं वो साकार हो जाता है। जिसके लिए अपनी सामर्थ्य नहीं होती लेकिन उस पिता की गुप्त मदद सदा हर कदम पर साथ रहती है और उसे अनुभव करती हूं। ओम शांति।
ओम शांति। इस कल्प के अंदर मेरा भी ये परम पद्मा पदम सौभाग्य है कि मुंबई से सेवा स्थान पर रहते रहते ड्रामानुसार मेरा दिल्ली में भी जाना हुआ, जहां बड़ी दीदी के अंग संग रहती थी, वहां गुलजार दादी और कई बहनों से रहना और मिलना भी होता रहता था। दादी के संग दिल्ली से ही परिचय तो था और उसके पश्चात इस ड्रामा के अंदर जो हमारी बिजनेस विंग बनी हुई है, दादी उसकी चेयरपर्सन होने के कारण और थोड़ी बहुत गुजरात की जिम्मेवारी थी, इसलिए दादी से बहुत बारी उस मीटिंगों में चाहे कार्यक्रमों में मिलना जुलना रहता था। 1954 में जब इस ज्ञान में आई उसके पश्चात 94 में हम लोगों ने राजकोट की सिल्वर जुबली में बहुत बड़ी एक राजकोट से मुंबई की कार यात्रा निकाली थी। उस कार यात्रा के दरमियान गुलजार दादी का भी आगमन राजकोट में हुआ था और बहुत बढ़िया प्रोग्राम उस समय सिल्वर जुबली का धामधूम से मनाया। दादी उस समय हमारे पास आकर के रही भी, वैसे तो बहुत बारी आकर के रहती थी, मिलती थी। यहाँ ड्रामा अनुसार राजकोट में जो कहीं अलग अलग प्रकार के विघ्ना आते थे, चाहे आर्य समाजियों के, चाहे कुल लौकिक, चाहे अलौकिक परिवार वाले भी, तो दादी मेरा इतना ध्यान रखती थी और जब कभी मुझे मिलती थी तो बार बार मेरे को उन लोगों की खबर पूछ के और मेरे में बहुत सारी शक्ति भरती थी। अभी जिस स्थान पर मैं रह रही हूँ उधर जो लाइब्रेरी बनी हुई है, उस लाइब्रेरी का भी ड्रामा अनुसार दादी जी ने ही उद्घाटन किया। और ये स्थान दो विभाग में बटा हुआ है, तो जो दूसरा विभाग है उसके भूमि का भूमि पूजन भी हमारी दादी गुलजार जी के वरद हस्तों से हुआ। और वैसे तो कई बार दादी का राजकोट में आना जाना हुआ और बहुत स्नेह से, संबंध से हम बहुत होमली और हल्के होकर के आपस में मिलते थे। और मैं शुरू से लेकर के दादी की ये दो तीन विशेषताओं के ऊपर मेरा ध्यान जाता था कि बहुत कम सोचना, बहुत कम बोलना और धीरज बनाए रखना, शांति मूरत बना के रखना। और एक बात मुझे बार बार याद आती है जो दादी कहती थी, भले शरीर छूट जाए परंतु खुशी न जावे, तो उस मंत्र को लेकर के मैं भी अपने जीवन में दादी को सामने रखते हुए देखती रहती हूँ कि जैसे दादी सदा खुश रहती थी और सबको खुशियाँ बांटती रहती थी, मुझे भी, वैसे तो हम सबको बाप समान बनना ही है, परंतु साकार में हमारी जो बड़ी दादियां हैं, पूर्वज है, चाहे एडवांस पार्टी की सब साथी बहने हैं दादियां, उन सब से बहुत कुछ प्रेरणा ली है। और कभी हमको उनसे जुदा हूँ या जुदा रह रहे हैं ये अनुभव ही नहीं हो रहा है। आज भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि दादी हमारे अंग संग है। और दादी से मैंने यही एक विशेषता अपने जीवन में धारण की है और मैं तो हमेशा उसको बहुत मीठे मीठे शब्दों में गुले गुलजार दादी ही कहती रहती थी और बहुत प्रेम से उनसे मिलती आई हूँ। और मुझे भी आज यही एक प्रेरणा मिल रही है कि अभी समय हम सबको घंटी बजा के थोड़ा इशारा दे रहा है कि जितना हम मानते हैं उतना समय नहीं है। और जैसे कहते हैं पुरुषार्थ शब्द तो निकाल ही देना है, अभी तो सहज और सहज रीति से अपने जीवन में वो धारणाएं हम ऐसी बना के चले जो हमको मेहनत का अनुभव न हो, परंतु हम मोहब्बत में उसके पीछे अपनी जान और जिगर दे दें। यही आज का मेरा दादी के प्रति दृढ़ संकल्प है। सर्व गुजरात निवासी, गुजरात के भाई बहनों की तरफ से भी, गुजरात में दादी का आना जाना बहुत रहता था और गुजरात से बहुत प्यार भी था, समीप भी थी। गुजराती सारी आइटम दादी को बहुत पसंद आती थी और हम लोग कई बार दादी के लिए वो आइटम लेकर के मधुबन में भी जाते थे, तो बहुत प्यार से दादी मिलती रहती थी। तो मैं व्यक्तिगत अपनी तरफ से, सर्व गुजरात निवासियों की तरफ से, गुजरात की हमारी साथी बहनों की तरफ से, चाहे छोटे बड़े बच्चे बूढ़े कुमार कुमारियां, सर्व जो गुजरात में बेहद सेवा में उपस्थित हैं, उन सब की तरफ से आज हम दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। वर्तमान समय शांतिवन परिसर के डायमंड होल में सभी दिवंगत दादी हृदय मोहिनी जी के लिए योग कर रहे हैं। अपने स्नेह के प्रकंपन दिवंगत आत्मा के लिए भेज रहे हैं। हमने दादी हृदय मोहिनी जी का अंतिम संस्कार देखा। वहां से सभी यहां डायमंड हॉल में आकर बाबा की यादों में दादी जी को याद करते अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं। संस्कार शब्द बहुत गहरा है और पार्थिव शरीर को जब अग्नि दी जाती है उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। जिस तरह आत्मा में संस्कार है कि वो परमधाम से आती है और पूरा फेरा कर परमधाम वापस जाती है, प्रकृति की भी हर चीज में एक संस्कार है। जैसे जल सागर से चलता है, पर्वतों पर पहुंचता है, फिर वापस सागर में आ जाता है तो उसका फेरा पूरा हो जाता है। बीज मिट्टी से शक्ति लेता है, पत्ते वृक्ष डालियां फल सब बनते हैं, फिर सब चीजें एक दिन मिट्टी में मिल जाती हैं। ऐसे शरीर का ये अंतिम संस्कार कि पांच तत्वों से बनता है शरीर, यात्रा आगे करता है और ये उसका अंतिम संस्कार कि एक दिन फिर वो पांचों महाभूतों में, पांचों तत्वों में ये शरीर विलीन हो जाता है। अध्यात्म ज्ञान जीवन की हर राह को सरल कर देता है। जीवन को नया मोड़ देता है और जीवन को परम सत्ता परमेश्वर परम पिता परमात्मा शिव से जोड़ देता है। तो आइए उस पिता के साथ जुड़कर कुछ समय डायमंड हॉल में योग में बैठते हैं। पूरे विश्व में जहां भी भाई बहने हैं अपने स्थान पर बैठकर योग साधना कर सकते हैं। 12:30 बजे तक यहां योग चलेगा, फिर दादी जी बाबा को भोग अर्पित किया जाएगा और बाबा का संदेश भी हम सुनेंगे। ओम शांति।
Thank you. ओम शांति। बाबा की और प्यारी गुलजार दादी जी की यादों में समाये हुए, खोए हुए हम सब अपनी डबल लाइट अव्यक्त स्थिति में बैठे हैं। हमारे समक्ष आदरणीय निर्वैर भाई, मुन्नीबेन मृत्युंजय भाई, डॉक्टर निर्मला दीदी, जयंतीबेन मंच पर विराजमान है कुछ ही देर में, आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, ब्रजमोहन भाई तथा अन्य मंच पर पहुंच जाएंगे। तब तक हमारा मधुरवाणी ग्रुप जो बाबा के दिव्य वरदानों से अभिभूत है, जिनको बाबा का ऐसा वरदान है, समय के साथ वातावरण के अनुरूप तुरंत गीत लिखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं और हम सबके समक्ष अपनी उस कला को रखते हैं। ऐसा ही बाबा वाली दादी जो बाप से साकार में ही मधुर मिलन मनवाती ही नहीं, लेकिन वरदानों से हम सबका श्रृंगार करती रही, ऐसी गुलजार दादी जी की विशेषताओं, गुणों और महिमा से संपन्न मधुर वाणी गीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
हेलो,
ओम शांति। ओम शांति। हम सब जानते हैं कि ड्रामा का हर दृश्य विविधता लिए हुए है, नया नहीं है, तो भी दिल के भीतर से कहीं से आवाज आती है कि ओ दादी, क्या कल्प के बाद ही मिलना होगा। ओ बाबा वाली दादी, तुम बहुत याद आओगी, पग पग पर हमको याद आओगी, बहुत याद आओगी।
बाबा हर मिलन में हमको बेहद आनंद आया है, प्रभु मिलन के प्यारे दिन फिर कब दिखाओगे, ओ बाबा वाली दादी तुम याद बहुत आओगे, क्या कल्प बाद ही दादी हमको मिल पाओगे, बाबा को तुम सामने आते हो,
वरदानी नैनों से तुम बाबा को दिखाती हो,
सुनते आव्यक्त मुरलियां तुम सामने आओगी, बाद ही दादी हमको मिल पाओगी, हमको मिल पाओगी,
आज्ञाकारी बन कर
वतन में होता जाना, बाबा के संदेशों का सुंदर सार सुनाना, सपनों में भी बाबा को तुम साथ ले आओगी, ओ बाबा वाली दादी तुम याद बहुत आओगी, क्या कल्प बाद ही दादी हमको मिल पाओगी, हमको मिल पाओगी, मालूम हमें सब दादी तुमने तो बहुत दिया है,
गजब की सेवा की जो दिल करता शुक्रिया है,
जब तक धरती गगन है हमसे भुला न पाओगी, ओ बाबा वाली दादी तुम याद बहुत बाद ही दादी हमको मिल पाओगे, ओ बाबा वाली दादी तुम याद बहुत आओगे, तुम याद बहुत आओगे, तुम याद बहुत
सुनते सुनते यादों में खो गए। और अभी एक बहुत सुंदर वीडियो सॉन्ग जो गुलजार दादी जी की स्मृति में विशेष दिल्ली से बनाया गया है, आप सभी को सुनेंगे भी और देखेंगे भी। और गीत गाया है हरीश भाई मोहन ने।
हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका देव रूहाने प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका देव रूहाने प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर। चले गए हम सब से दूर, तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कह भीगा दिल ये हमारा है। बाने लगाया हमको गले दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादे जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहाने प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहाने प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब के आप मुस्कान हो, हम सब के आप मुस्कान हो, भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे, गए आज हम जैसे हार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार।
ओम शांति। अभी शशि बेन भी आदरणीय गुलजार दादी जी को भोग लगाने, बाप दादा को भोग लगाने हम सभी के बीच पहुंच गई है। हम सब वतन में चलकर आदरणीय दादी जी को, बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। शशि बेन जी, हम सब की तरफ से, सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से खूब खूब दादी जी को याद देंगी।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
I'm जिस पर बच्चों का अधिकार है, पापा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, पापा तेरे हम रहे।
प्यारे आज आप सबकी अति स्नेह भरी याद प्यारे दादी जी के निमित्त लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में तो अनेक प्रकार की सजावट थी, कई प्रकार की मालाएं और कहां कहां मोती हीरे डायमंड की सजावट दिखाई दे रही थी, लेकिन बाबा कहां है वो मैं देख रही थी। दूर से एक बहुत सुंदर सजा हुआ रथ और पुष्पक विमान की तरह से था दूर से आता हुआ दिखाई दिया। जैसे नजदीक आया तो उसमें बाबा और दादी दोनों दिखाई दिए, लेकिन कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि बाबा के रूप में दादी और दादी का रूप बिल्कुल बाबा जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई खेल चल रहा हो लाइट में, एक सेकंड बाबा एक सेकंड दादी का रूप बाबा जैसा दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा ये तो पहचाना भी नहीं जाता है कि ये दादी हैं या बाबा हैं। तो मैं बाबा को बोला, बाबा आज तो दादी का रूप बिल्कुल बाप समान दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा, बच्ची मालूम है कि रथ का कितना महत्व होता है, तो बाप ने इस रथ को इतना अच्छी तरह से संपन्न किया है। और ऐसे दिन पर जबकि भगत सारे विश्व के अंदर भगवान को याद और भगवान से मनोकामना पूर्ण करने के लिए कई प्रकार की कामनाएं कर रहे थे, और जब तक वो संपन्न रूप या कोई भी रथ का रूप नहीं देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा कमी महसूस होती है। तो बाप ने ऐसे समय पर इस रथ को संपन्न बना करके ऐसे स्वरूप में भक्तों के सामने प्रत्यक्ष किया। तो बाबा ने कहा, मालूम है उस दिन क्या हुआ? मैं तो शांत थी। बाबा ने कहा, भक्तों के सामने जैसे कोई बिजली कड़कती है, वो बिजली नहीं थी लेकिन लाइट की ऐसी वर्षा हो रही थी। उनको कई प्रकार के अनुभव हो रहे थे और साथ साथ बाबा के बच्चे जो हैं वो भी कई तरह से अपने आप को भरपूर कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि दादी आप तो ऐसे चली गई। कहा बाबा तो मेरे को रोज कुछ समय से कहाँ कहाँ सैर कराते थे और ऐसे ऐसे स्थान पर लेके जाते थे जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और विशेष सेवा के प्लान भी होते थे। तो मैंने कहा कि आप ऐसे कहाँ जाते थे? तो मुस्कुरा रही थी, कहते बाबा से पूछो। बाबा ने कहा, देखो इस बच्ची का शुरू से ऐसा पाठ रहा जो अनेक प्रकार की ट्रांस मैसेज लेके आती थी, उस मैसेज के आधार से यज्ञ के कई गुप्त कार्य, यज्ञ के कई विशेष कार्य उस मैसेज के आधार पर चलते रहे। लेकिन अभी जो है बच्ची, उस समय से बाप इस बच्ची को भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाते थे और भिन्न भिन्न स्थानों पर बाप इस बच्ची के द्वारा अनेक प्रकार के संदेशों के द्वारा, कभी बाबा एडवांस पार्टी, कभी साइंटिस्ट के पास, कभी विश्व परिवर्तन करने वाले जो महान लीडर हैं उनके पास, उनके व्यास बाबा उनको ले जाते थे। तो वहाँ ये अभी इस बच्ची का कुछ समय से ऐसा पाठ चल रहा है जो कि ऐसे ऐसे लोगों को वो संदेश दे करके कार्य करने के लिए प्रेरणा करती रहती हैं। फिर तो मैंने कहा, दादी आपका शरीर तो क्या करता था? तो मुस्कुरा रही थी, कहती है शरीर अपना काम करता था, बाबा अपना काम कराता था और मैं तो न्यारी और प्यारी होकर के देख रही थी। तो बाबा ने कहा, मालूम है इस बच्ची का शुरू से लेकर के न्यारे और प्यारेपन का पाठ रहा है, निर्संकल्प, कोई भी संकल्प नहीं। तो देख रही थी, फिर कहती है ये डॉक्टर्स पता नहीं क्या करते थे। तो उनकी मुस्कुराहट में एक बहुत बड़ा राज दिखाई दे रहा था। तो चुप हो गई, कहती बाबा से पूछो। तो बाबा ने कहा, इस बच्ची का बाप ने रथ लिया है और रथ का जिम्मेवार बाप रहा है और डॉक्टर्स किस प्रकार से इस रथ की संभाल कर रहे थे, जैसे कोई रुई को टच करते हैं ना तो रुई को टच करते ही उससे बहुत कुछ अनुभव होते थे। डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, ऐसा उनका पार्ट रहा, करते हुए भी उनके पास शक्ति, अनुभूति और कई प्रकार के उनको वरदान मिलते थे। फिर मैंने कहा, दादी देखो आज के दिन तो एक एक बहुत याद दे रहा है। कहता है, दादी को मेरी याद देना। तो सामने क्या देखती हूँ कि बहुत सारे कार्ड्स थे और बहुत सारी बातें लिखी हुई, जैसे कोई पहाड़ होते ना, ऐसे पहाड़ के पहाड़ वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, जिसमें थैंक्स, दादी को प्यार भरे उलहने और दादी के लिए सबने जो कहा कि बाबा से मिलाया, वरदान दिए, साकार बाबा का अनुभव कराया। तो बाबा ने दादी को कहा, बच्ची देखो, तो जैसे दादी उसको देखने लगी, वो जो थैंक्स के लेटर, अनुभव की जो फीलिंग्स थी, वो पहाड़ के पहाड़ एक बिंदी एटम के रूप में वो परिवर्तित हो गए। एकदम छोटी सी लाइट दिखाई दे रही थी और इतनी पावरफुल लाइट थी, उस लाइट के अंदर तो इतनी शक्ति आ रही थी। तो दादी मुस्कुराती हैं, दादी कहती है, देखो ये जो वरदान मिले हैं, जो अनुभव मिले हैं, उसके लिए थैंक्स देने का नहीं, बाबा ने हमको ये क्या कहा है कि इतना संपन्न शक्ति स्वरूप बनो और उसके द्वारा दूसरों को अनुभव कराओ। तो ऐसा वो रूप, जैसे कि वो शक्ति की लाइट किरणें चल रही थी और उस किरणों से बहुत ज्यादा शक्ति आ रही थी। फिर तो मैंने कहा, बाबा दादी का अभी सब कहते हैं कि दादी ने इतना, बाप ने दादी के रथ द्वारा हम सबको इतना भरपूर किया है और आगे क्या। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा, बाप ने इस रथ द्वारा बच्चों को हर तरह से पूर्ण ही बहुत कुछ प्राप्त कराया है और अभी बच्चों को क्या करना है, बच्चों को अपने आप को प्रिपेयर करना है। फिर दूसरा बाबा ने कहा, जो कुछ मिला है उसकी प्रैक्टिस करो। फिर तीसरा बाबा ने कहा, बच्चों को परफेक्शन की ओर जाना है, जैसे बच्ची हर चीज के में परफेक्ट थी और परफेक्ट का कार्य करती थी, लाइट भी थी, तो बच्चों को परफेक्शन की ओर जाना है, खुद को संपन्न बनाकर नई दुनिया के सम्मान, नई दुनिया को भी वैसा ही बनाना है। तो ऐसे कह रहे थे। फिर बाबा को मैंने कहा, दादी को तो सब याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, दादी को देखो सब याद कर रहे हैं, सब मिस कर रहे हैं। कहती हैं, सबको बोलो मेरे साथ बाबा के पास बैठो, देखो कितने अच्छे अनुभव होंगे। तो जैसे बाबा ने सबको वहाँ इमर्ज किया और बीच में बाबा और दादी, बाबा के बीच में दादी और दादी के बीच में बाबा, हार्ट के बीच में दादी दिखाई दे रही है, लेकिन दादी का जो रूप था वो बिल्कुल संपन्न दिखाई दे रहा था। उसमें ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल संपन्न और हर प्रकार की अनुभूति हो रही थी। कभी दादी बाबा के हार्ट में बैठी हैं, कभी बाबा ने उनको अपने ऐसे ना बाहों में समाया हुआ है और इतना सुंदर दृश्य था और बाबा ही आज दादी का काम कर रहे थे। बाबा ने कहा, बाप ने बच्ची को वतन में बुलाया है तो बाप का फर्ज है कि बच्ची का कार्य करना। तो बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते जा रहे थे।
तो हर एक के पास बहुत सुंदर सुंदर वरदान पहुंच रहे थे। और फिर दादी देख के बहुत न्यारी और प्यारी अनुभव कर रही थी, बहुत ऐसे लाइट दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, बाप ने बच्ची को शुरू से ही दिल में समाया है और इसे शुरू से लेकर के अपना बना करके बच्ची के द्वारा विशेष कार्य कराए हैं और अभी भी बाप को नई दुनिया के लिए, सृष्टि परिवर्तन के लिए, बच्चों को संपन्न बनाने के लिए विशेष कार्य बच्चे एडवांस पार्टी के लिए और सबके लिए कराएंगे। फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा कि बाबा अभी तो भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने जैसे ही भोग खोला और दादी को खिलाने लगे तो दादी कहती हैं, सबको पहले वतन में बुला करके भोग खिलाना है। फिर आज दादी ने क्या किया, अपने हाथ से उठा करके बाबा के हाथ में दिया और बाबा के हाथ में जैसे दिया ना, तो वो सब के पास जैसे दादी ऐसे करके मुंह खोलो ऐसे करती थी दादी, तो सबके पास ऐसे ही दादी डाल रही हैं। भोग के साथ साथ हर एक के पास एक एक वरदान भी पहुंच रहा था। और बाबा ने कहा, बच्ची ने किस प्रकार से निर्संकल्प होकर के अपना सब कुछ, तन मन संकल्प श्वास बाबा को अर्पण किया और बाप की ही रही और बाप ही इसको अपने ही साथी बना करके यज्ञ के विशेष कार्य कराए हैं और भी कराते रहेंगे। फिर बाबा ने दादी को कहा, कुछ कहना है सबको? तो मुस्कुरा रही थी, बाबा को देखा, सबको देखा, कहती है, बाबा एक बात का ध्यान रखना है, ये सब बच्चे, इनको ऐसा तख्त दो जिस पे सदा बैठे रहें। तो बाबा ने कहा, कौन सा तख्त? बोला कि रहम दिल मर्सीफुल बने। और वो फिर तख्त सामने आया, एक कॉर्नर में लिखा हुआ था मर्सीफुल और दूसरे कॉर्नर में लिखा हुआ था शुभ भावना, तीसरे में लिखा था विश्व कल्याणकारी और चौथे में लिखा था वरदानी। तो दादी कहती है, बस अभी समय अनुसार सबको क्या करना है, स्वयं के प्रति भी मर्सीफुल बने और खास करके ब्राह्मणों के प्रति भी जो संकल्प आते हैं उसको अभी मर्सीफुल बन करके सब संकल्पों को स्वाहा करें। और भक्तों को तो क्या चाहिए, दुनिया में भी क्या चाहिए, मर्सी चाहिए, वो सारा समय यही मांगते रहते हैं। तो उन पे तो मर्सी करना ही है, लेकिन सदा मर्सीफुल की स्टेज पर रहें तो उससे खुद के अनुभव भी बढ़ेंगे, औरों की दुआएं स्वतः ही मिलेगी। समय अनुसार अभी इसकी जरूरत है। फिर तो दादी को ना खास करके जो सेवा साथी हैं, नीलू बहन और इनके सेवा साथियों की, दादियों की तो याद दी, खास करके इनकी भी याद दी। तो पहले तो बाबा ने इस यज्ञ के जो विशेष आधार मुहूर्त हैं उन सबको इमर्श किया। दादी उनको देख रही थी और सबके साथ हाथ पकड़ करके दादी ना ऐसे बहुत धीमे धीमे रास कर रही थी। फिर जैसे बाबा ने फिर नीलू बहन और इनके सेवा साथियों को इमर्श किया, तो बाबा बहुत दृष्टि दे रहे थे और दादी को कहा देखो इस बच्ची ने कितना अथक होकर सेवा की है। तो बाबा ने ही नीलू बहन और इनके साथियों को हाथ पकड़ करके जैसे झूला झूलाया और सर्कल में करके बहुत इनको अनुभव करा रहे थे। कहा बच्ची ने निमित बन करके ऐसा लगन से प्यार से साथियों को साथ लेकर के अपने सेवा का जो पार्ट बजाया है, इस सेवा के पार्ट में अनेकों का भाग्य भी खुला है और इस सेवा के पार्ट में अनेकों को अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। और ये सेवा तो निमित भाव से था, लेकिन जो बच्ची की लगन थी उस लगन के कारण बच्ची ने बहुत कुछ करके दिखाया है और इस रथ को ऐसा प्यार से संभाला है। बाप तो साथ था ही, लेकिन इस रथ को बहुत प्यार से संभाला है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और ऊपर से लाइट आती है तो जैसे हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंचता है। कर रथ की संभाल करना, वरदानों को प्राप्त करना, भाग्य को बढ़ाना, तो बच्ची का भाग्य भी बहुत सुंदर है, औरों का भी बढ़ाया है। फिर बाबा ने खास करके जो और सेवा के साथी रहे हैं या डॉक्टर्स रहे हैं उनको इमर्ज किया और उनको इमर्ज करते हुए कहा इनको जो कार्य करने के विशेष निमित्त सेवा मिली वो सेवा नहीं था, वो जीवन के अंदर कई प्रकार की अलौकिक शक्तियों की अनुभूति थी और अलौकिक शक्तियों के द्वारा जीवन के अंदर कई प्रकार के अनुभव भी थे। ये भाग्य था कि भगवान के रथ की संभाल करना और उसके द्वारा ही अपने अंदर गहरे अनुभव प्राप्त करना जो कि हर एक के लिए बहुत जरूरी है। फिर तो बाप दादी के लिए बताया, दादी बाबा को बोला सब मधुबनवासी सभी स्थान के देश विदेश के, फिर कभी कहा दिल्ली के, ऐसे सबका जैसे बाबा को दादी को याद दिया। बाबा ने कहा ये विश्व की दादी है और ये भगवान के रथ हैं और सबकी स्नेही रही हैं, सबका याद प्यार पहुंचा है और जिस तरह से न्यारी और प्यारी होकर के सबकी सेवा की है ऐसे बच्चे भी न्यारे प्यारे निस्संकल्प होकर के बाप को साथी बना के चले तो बाप के साथ के द्वारा हर तरह से अनुभव और सफलता है। फिर तो बाबा ने सबको याद दिया, दादी तो बहुत न्यारी और प्यारी होकर के देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। फिर दादी ने कहा देखो ना बाबा मुझे सारे विश्व का चक्कर लगाया है और कभी कहाँ कभी कहाँ निमित मात्र ये शरीर तो रेस्ट करता था और बाबा मुझे चक्कर पर ले जाते थे और बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर, वहाँ पर किस प्रकार से उनको कार्य करना है, बाबा उनको ये कार्य करने के लिए प्रेरणा इस रथ के द्वारा और बाबा खुद ही करते थे। मैं तो न्यारी होकर के बाबा के कार्य को देख रही थी। फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी बाप के साथ हैं और बाप विशेष कार्य इस बच्ची से कराया है और भी कराते रहेंगे। और सबको याद दिया ओम श्री।
ओम शांति। हम सभी ने बहुत प्यार से संदेश सुना जिसमें चार बातें विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराई, अनुभव, प्रैक्टिस, परफेक्शन, संपन्नता और दादी जी की स्पेशलिटी न्यारा और प्यारा बनकर मर्सीफुल होकर सर्व की विशेषताएं। शशि बहन, नीलू बहन को वतन का हार पहना रही हैं। जो बाप दादा ने वतन से उन्हें प्यार से दिया, उनकी विशेषताएं महसूस कराई, उनके साथ ही तारा बहन और नीलू बहन के साथ में जो भी बहनें दादी जी की सेवा में थी, अनुरोध है कृपया मंच पर आए। तारा बहन और साथी बहनें जो नीलू बहन के साथ में दादी जी की सेवा में थी, कृपया शीघ्र ही मंच पर आए। साथी जो भी भाई और बहनें सेवा में थे, गाम देवी की नेहा बहन, आशा बहन और जो भाई बहन सेवा में थे, कृपया मंच पर आए। इसके साथ ही साथ अनाउंसमेंट कर रही हूं, दीपा बहन बॉम्बे, माताएं अभी कोई भी भोजन के लिए नहीं उठेंगी, टीचर्स भी यहां ही बैठेंगी, जोन इंचार्जेस और सब जोन इंचार्जेस रामलोचन भाई के पास छोटे भंडारे में जाएंगे भोजन के लिए, भाई बड़े भंडारे में जाएंगे, अन्य टीचर्स और माताएं अभी बैठी रहेंगी, कोई भी भोजन के लिए नहीं जाए, क्योंकि क्यों लगाकर फिर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अनुरोध है, योगिनी बहन, मीरा बहन, कृपया मंच पर आए। मैनेजमेंट कमेटी की बहनें आशा बहन, सुषमा बहन, चंद्रिका बहन, कृपया मंच पर आए। डॉक्टर कविता बेन, डॉक्टर कविता बेन कृपया मंच पर आए। विजय भाई शक्ति भवन, सागर भाई शक्ति भवन, दिल्ली से चक्रधारी बहन शुक्ला बहन, विजय बहन ओआरसी, हाँ पुष्पा बहन पांडव भवन, कृपया मंच पर आए। डॉक्टर प्रताप भाई, गोपाल भाई, डॉक्टर बनारसी भाई कृपया मंच पर आएंगे। राजगोपाल भाई हैदराबाद, कृपया मंच पर आइए। संतोष दीदी, जयंती बहन, आत्म प्रकाश भाई ज्ञानमृत, मोहन सिंगल भाई, डॉक्टर सतीश गुप्ता,
जगमोहन भाई रवि,
जगमोहन भाई दिल्ली, रवि भाई दिल्ली, कृपया मंच पर आइए। और इसके साथ ही मैनेजमेंट कमेटी के भाई भी कृपया मंच से फल स्वीकार करेंगे। मैनेजमेंट कमेटी के भाई
आशा बहन आप आइए मंच पर। आशा बहन लेके गए क्या?
आके गए।
लिया फल लिया? अच्छा, बड़ी बहनों ने ली, कौन नहीं लिया? नहीं, जो बहने आ जाइए, या तो वो बहने भी आ जाइए जो इसमें बड़ी बड़ी बहनें जो भी है ना, कर्नाटक जोन की 5-6 बहनें हैं, पंजाब जोन की 5-6 बहनें हैं, बड़ी बड़ी ऐसे आ जाए, ईस्टर्न जोन की बड़ी बहनें, सब जोन की बड़ी बहनें जो है 5-6 जो आई हुई है वो आ जाएगी। छोटी मोटी बहनें नहीं आइए, केवल बड़ी बहनें आ जाइए।
रात भर को बैठना अब कहानी हो गई, रात भर को बैठना अब कहानी हो गई। मीठी दादी बाप दादा, मीठी दादी बाप दादा,
बैठो ना,
के निशानी
प्रवीणा आप भी आ जाइए।
यज्ञ से
शांतिवन में जो बड़ी बहने रहती है,
आसमानी हो गई, आसमानी हो साकर करते थे कभी उस प्यार के सागर को, जो जो भी जाते थे लबालब भरते थे गागर को, वो अपने घर वतन को जाने, अपने घर वतन को जाने को दीवानी हो गई, को दीवानी हो गई। यज्ञ सेवा करते करते आसमानी हो गई, आसमानी हो।
मर्ज होती थी स्वयं इमर्ज बाबा करती थी खुद को पी
समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर चले गए हम सब से दूर तुम बिन अब संगम है अधूरा तुम बिन अब संगम है अधूरा कहती है हर अश्रुधार कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार ओ प्यारे दादे गुलजार ओ मीठे दादे गुलजार ओ प्यारे दादे गुलजार ओ मीठे दादे गुलजार बाबा ने लगाया हमको गले दादे जी आपके द्वारा है तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ कहे भीगा दिल ये हमारा है बाबा ने लगाया हमको गले दादे जी आपके द्वारा है तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ कहे भीगा दिल ये हमारा है कहे भीगा दिल ये हमारा है अलविदा आपका दादे जी नहीं करता है ये मन स्वीकार अलविदा आपका दादे जी नहीं करता है ये मन स्वीकार कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार ओ प्यारे दादे गुलजार ओ मीठे दादे गुलजार ओ प्यारे दादे गुलजार ओ मीठे दादे गुलजार तुम दौलत हो हम सब की दादी तुम ही तो दिलो जान हो बर्दाश्त नहीं तेरा जाना हम सब की आप मुस्कान हो हम सब की आप मुस्कान हो भावुक नैना झर झर बरसे भावुक नैना झर झर बरसे गए आज हम जैसे हार कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार ओ प्यारे दादे गुलजार ओ मीठे दादे गुलजार ओ प्यारे दादे गुलजार ओ मीठे दादे गुलजार ओ प्यारे दादे गुलजार ओ मीठे दादे गुलजार
ओम शांति। मुझे करुणा भाई कहते हैं। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिछले 60 साल से पढ़ाई पढ़ रहा हूं, आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त कर रहा हूं। वैसे मैं प्रजापिता ब्रह्मा पिताश्री उनसे मिलने 1960 में आया था माउंट आबू। उस समय पर मैंने मातेश्वरी जी से भी मिला, तो मुझे इस आध्यात्मिक शिक्षा में मातेश्वरी जी ने एक जैसे नया जन्म दिया। आध्यात्मिक जीवन क्या होता है उन्होंने सिखाया, और जो शिक्षा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं, वो मैंने पिताश्री जी से सीखा 69 तक। जब पिताश्री जी ने शरीर त्याग किया, तो उसके बाद शिव बाबा ने हमारे दादी गुलजार जी जिसको प्यार से कहते हैं, हृदय मोहिनी जी को, उन द्वारा हमको वो शिक्षा कंटिन्यू रहा। लगभग 50 साल तक दादी जी द्वारा हमने शिक्षा प्राप्त की। अंतर ये था कि बाबा जी के जो भी साकार मुरली कहते हैं, जो हमने सुना है उनसे, वो एक नॉर्मल वॉइस से था। आवाज जो है बाबा जी के ही था, परंतु जब स्वयं परमपिता परमात्मा गुलजार दादी जी के तन में आए, उसमें पहला अंतर उनका वॉइस एक अव्यक्त रूप से हो रहा था, बहुत ही लो, जो नजदीक भी हमको सुनने में नहीं आता था। जो मेरा ऊपर जवाबदारी था उस समय पर, ये आवाज को सारी दुनिया में सभी को सुनाना है, क्योंकि 140 देशों में बाबा की ये शिक्षा थी। तो ये दूसरी हमारे लिए परीक्षा थी, और विशेष मैंने दादी जी में ये देखा, पूरी मुरली तक दादी को ये नहीं पता कि भाई मैं कहां थी और बाबा ने क्या सुनाया, दोनों बातों का उनको ज्ञान नहीं था। जबकि साकार बाबा को जो शिव बाबा सुनाते थे, उन्हीं के मुख कमल से उनको अच्छी तरह से वो सुनते थे। वो ये कहते थे कि भाई बच्चे मालूम है पहला विद्यार्थी कौन है, तो बाबा कहते थे देखो इस मुख से बाबा सुनाता है, ये मैं कान से सुनता हूँ, पहला नंबर विद्यार्थी मैं हूँ। परंतु हमारे जो दादी जी है उनको कुछ नहीं पता। कई बार जब दादी वापस आ जाती थी तो हम बोलते थे आज बाबा ने ये सुनाया, दादी कहती थी मुझे सुनाओ क्या और क्या सुनाया, इस तरह से। ये एक विशेष पार्ट, इसको मुझे ये खुशी होती थी, देखो बाबा ने जो तन को लिया है ये कितनी इनोसेंट है। कभी भी दादी जी को ये नहीं होता था कि भाई मेरे में भगवान सुनाता है, ये आनंद एक सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कुछ दादी को दिखे या दादी कभी वर्णन किया हुआ नहीं है। बल्कि सारे विश्व दादी जी को प्यार करते थे, दादी जी को इतना आनंद प्राप्त किया है, तो इसीलिए सारे विश्व में एक विश्व माता के रूप में, एक विश्व में आदर्श महिला के रूप में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं सारी दुनिया ने, उसका एक सैंपल एग्जाम्पल रह करके अपना प्रैक्टिकल लाइफ को हम लोगों को दिखाया, सिखाया, और हम सभी आज जैसे बाबा दादी और हमारे गुलजार दादी जी को भी हम कभी भी इस जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हम सबका आदर्श दादी है। ओम शांति।
ओम शांति। इस ईश्वरीय मार्ग में जीवन बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, सहज योगी और महान बन जाता है, और वो भी बहुत सहज विधि से, क्योंकि हमें ये पहचान मिल जाती है कि वास्तव में मैं कौन हूँ और किसके संतान हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा बचपन से, बाल्यकाल में ही मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई, और उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती दिल्ली में आए हुए थे, और माता पिता ने सोचा कि हम अपनी बच्ची को भी उनसे मिलाकर लेकर आएं। स्वाभाविक ही है, जो अच्छा संग होता है, अच्छी बातें होती हैं, पेरेंट्स को ये रहता ही है कि अपने बच्चों को भी उसका लाभ दिलाएं। और वह क्योंकि 1960-61 से ही संपर्क में आए थे, और उसके एक दो वर्ष बाद ही, जिन्हें हम प्यार से प्यारी मम्मा कहते हैं, जगदम्बा सरस्वती, वो आए थे, उनका क्लास था तो मुझे लेकर गए, और मेरा मिलना हुआ तो प्यारी मम्मा ने, क्योंकि मैं पहली बार ही आई थी इसलिए मुझे वो मेमोरीज बहुत हृदय में तब से छपी हुई हैं, और मैं आज बड़े उससे गर्व के साथ कह सकती हूँ, तो मुझे प्यारी मम्मा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी। उस समय समझ नहीं थी कुछ भी, और मैं उनके चेहरे को ही देखती रह गई, और उनके नेत्र जब मेरे नेत्रों पर थे तो एक बच्चा भी जैसे एक बहुत आकर्षक किसी चीज को, मूर्ति को या कोई भी चित्र देखकर एकदम वहां ही एकाग्र हो जाता है, ऐसे ही मैं प्यारी मम्मा को देखकर एकदम दत्तचित उन्हें देखती रह गई, और मम्मा ने बड़े प्यार से हमारे हाथ को लेते हुए और अपनी उंगली यहाँ लगाई, कहा तुम आत्मा हो। अब मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था मैं आत्मा हूँ किसी भी प्रकार का, पर पेरेंट्स को देखती थी कि वो कुछ बैठते हैं शांति से, योग करते हैं, ये तो मैं आज शब्द दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद अनुभवी हो चुकी हूँ। उस समय तो मेरे पास ये कोई शब्द भी नहीं थे, कहना ही नहीं आता था योग क्या होता है, आत्मा क्या होती है, और मुझे ये भी मालूम नहीं था ये जगदम्बा सरस्वती हैं। हमारी मम्मी ने मुझे बताया, बेटे ये जगदम्बा सरस्वती हैं, और मम्मा ने जब मुझे कहा आत्मा हो, तो उसके कुछ समय बाद मेरे अंदर तब से लेकर के ही बार बार एक अंदर की आवाज आती है कि मैं क्या आत्मा हूँ, पर मुझे आत्मा का तो भी ज्ञान नहीं था, लेकिन एक अंतर आत्मा की कुछ फीलिंग्स बन जाती हैं, वो बन गई, और क्या होता था कि ऐसे फील होने लगा कि मुझे सब पुष्पा पुकारते हैं तो वो अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे अंदर एहसास होता चला गया, और मैं देखती थी पेरेंट्स योग में बैठते हैं तो मैं साथ में बैठ जाती थी और समझती थी चुप करके बैठना है, बस ये आंख खोलकर बैठते हैं और आंख खोलकर बैठना है, परंतु एक अलग सी शांति, एक अंदर से एक सुकून महसूस होता था, जबकि उस छोटी आयु में मुझे कोई अशांति क्या होती है ये कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी अनुभव नहीं था, घर में बहुत अच्छा सब कुछ चलता था, कोई लड़ाई झगड़ा अशांति इन बातों से हम बहुत दूर ही, क्या अनभिज्ञ ही थे, बस स्कूल जाना है, पढ़ना है, घर में आना है, जो पेरेंट्स ने कहना है वो करना है। उसके बावजूद भी जब मैं बैठ जाती थी साथ में, तो एक अंतर आत्मा को एक ऐसी अंदर की जैसे एक अलौकिक फीलिंग, उस समय तो मैं ये शब्द भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन मैंने जो लाइफ में अनुभव किया तो आज मैं उस अथॉरिटी से कह पा रही हूँ, ऐसा मैंने महसूस किया। और फिर धीरे धीरे मेरा इस ओर इतना रुझान होता गया कि मुझे उसमें इतना आनंद महसूस होने लगा, एक अलौकिक आनंद, बाहर से चाहे सब कुछ था, सब सुविधा थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पेरेंट्स का बहुत प्यार भी था, कहीं किसी तरफ नजर भी नहीं जाती थी। एक सहज जीवन जिसको कहते हैं, आराम का जीवन जिसको कहते हैं, उसके बावजूद भी मुझे अंदर से एक सुकून, एक आनंद महसूस होता था और ये ख्याल चलता था कि ये पुष्पा अलग है और मैं अलग हूँ। मम्मा ने कहा आत्मा, वो मैं आत्मा हूँ। उस सोचने मात्र से ही मुझे अच्छा लगता था, तो मैं बैठती भी थी और मैं देखती थी हमारे पेरेंट्स ईश्वरीय महावाक्य पढ़ते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, वाणी कहते हैं, तो मैं वो भी पढ़ने लगी। और कई बार हमारे पेरेंट्स पढ़ रहे होते थे तो वो देखते थे ये बड़े दत्तचित होकर सुन रही है, तो मुझे भी कहते थे आप पढ़ोगी, अच्छा आप पढ़ो, हम सुनते हैं। तो धीरे धीरे मेरा वो इंटरेस्ट बनता गया और उसको पढ़ते पढ़ते मैंने ये समझती गई, समझ लिया कि एक्चुअली मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। और वो परमात्मा कौन है ये भी उन महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आने लगा कि ये शारीरिक माता पिता मेरे शरीर के हैं, जिसको मैं पुष्पा कहती हूँ, मुझे जब बुलाते हैं ये, लेकिन मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता वो कोई और है। और स्कूल में भी कई बातें मैं देखती थी, पढ़ती थी क्रिश्चियनिटी के बारे में, मुस्लिम के बारे में या गुरुद्वारे के बारे में, तो ख्याल चलता था। आयु छोटी थी लेकिन बुद्धि में आती थी ये सारी बातें। भले मुझे भक्ति मार्ग का अनुभव नहीं था क्योंकि घर में इस प्रकार की कोई विधि या कोई इस प्रकार की चर्चा भी अधिक नहीं चलती थी, क्योंकि पेरेंट्स भी इस ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े थे, लेकिन मैं देखती थी स्कूल में कई बार स्टूडेंट्स भी, कोई क्रिश्चियन होता था, कोई कुछ किस धर्म को मानने वाला, कोई सिख होता था, तो वो सुनाते थे अपनी बातें या बुक्स में भी पढ़ती थी, तो मन में आता था ये इतने सारे गुरुद्वारे बने हुए हैं, इतने सारे चर्चेस बने हुए हैं, इतने सारे सब कुछ है, मनुष्य कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, क्या इनको मालूम नहीं है कि इनका पिता कौन है? क्योंकि ये तो सब कहते हैं भगवान एक है, परमात्मा एक है, वो मालिक है सृष्टि का, कोई अल्लाह कह रहा है उसको, कोई प्रभु कह रहा है उसको। तो ये बहुत बुद्धि चलती थी, तो जो मैं ईश्वरीय महावाक्य पढ़ती थी तो मुझे उससे धीरे धीरे वो सारी बातें स्पष्ट होती गई। और फिर मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी कि आप मुझे भी साथ ले जाया करो। हमारे फादर का ये लक्ष्य था कि हम अपनी लौकिक पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि जब हमारा लौकिक जन्म ही हुआ था तो हमारे फादर ने संकल्प किया था कि मैं अपनी बेटी को टीचिंग लाइन में डालूंगा, क्योंकि भारत को पढ़ाई की बड़ी जरूरत है, शिक्षा की कमी है यहाँ पर, और सबको शिक्षा मिले तो ये पढ़ाने का काम आगे चल के करे। ये उनका इस ईश्वरीय मार्ग में आने से पहले का संकल्प था। तो वो मुझे बार बार ये कहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन साथ साथ मुझे ये ईश्वरीय पढ़ाई भी बहुत प्रिय लगने लगी। और मैं अपने पेरेंट्स को रात को ही कह के सोती थी कि आप सुबह जब आश्रम पर जाएंगे तो मुझे जरूर साथ ले जाना। तुम्हारी मम्मी इस बात का ध्यान देती थी और हमें जगाती भी थी, क्योंकि छोटी आयु थी, धीरे धीरे तो बड़ी होते गए, समझते गए, फिर 13-14 वर्ष की आयु में तो मुझे सारी बातें समझ में आती गई। और मैंने उन महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते समझ लिया कि परमात्मा जो है वो सबका पिता है, माना वो शरीरों का पिता नहीं है, तो वो शरीरधारी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही आत्मा हूँ। तो ये मुझे उस मुरली को पढ़ते पढ़ते स्पष्ट हुआ। सेंटर पर जाती थी, संडे क्लास करती थी, वहाँ दीदी मुरली पढ़कर सुनाती थी तो कुछ समझ में आता था, लेकिन वायुमंडल संग मुझे बहुत आकर्षित जैसे खींचता था अपनी तरफ। और मैं शिव बाबा की लाइट गोल ओवल शेप की वहाँ लगी रहती थी, हमारे घर पर भी रहती थी तो मैं उसको लगातार देखती रहती थी। बैठ जाती थी शांति से चौकड़ी लगा के और कंटिन्यूस मुझे उसमें एक इतना दिव्य आकर्षण महसूस होता था। तो हमारे पेरेंट्स भी देखते थे तो आंख खोल के लगातार उस लाइट को ही देख रही है, तो उन्हें भी लगता था, तो वो समझते थे जरूर इसको कुछ तो इसमें मिल रहा है, जबकि वो तो एक लाइट बनी हुई है। परंतु मेरा जो मन था वो सिर्फ उस लाइट को देखकर वहां तक सीमित नहीं था, परंतु उस सुपर लाइट में कि वो एक लाइट है परमात्मा और एक ज्योति, सूक्ष्म ज्योति है। और उस मुरलियों को पढ़ते पढ़ते मुझे स्पष्ट होता गया कि वो निराकार है। तो मेरे समझ में आ गया कि ये जो लोग सभी कहते रहते हैं भगवान अल्लाह, तो वो तो एक बिंदी है, निराकार है, इसीलिए तो सभी का वो पिता हो सकता है। क्योंकि हम किसी भी मनुष्य को देखते हैं तो देखते एक भाव उठाता है कि ये हिंदू है, ये फलाना है या ये क्रिश्चियन है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी आ जाता है ये अंग्रेज है, ये इस ड्रेस वाला है, ये इस फलाने प्रोफेशन वाला है। तो इन बातों से, मुरली के अध्ययन करने से, उसमें जो महावाक्य मैंने पढ़े, तो मेरा पिता श्री ब्रह्मा से भी मिलना हुआ 3-4 बार माउंट आबू में भी और दिल्ली में भी, जो इसके साकार संस्थापक हैं, तो उनके मुख पर भी वो एक दिव्य आकर्षण मेरे को महसूस होता था। जो लाइट में घर में और सेंटर पर जली हुई ओवल शेप की देखती थी, तो जो आकर्षण मुझे उसमें लगता, वैसा ही आकर्षण मुझे पिता श्री के चेहरे पर लगता। तो मुझे ये अनुभव होता था कि वही लाइट इनके मुख से बोल रही है और वही महावाक्य जो मैं उस मुरली में पढ़ती, तो पढ़ते पढ़ते मुझे स्पष्ट होता गया कि भगवान ज्योति बिंदु हमें समझाने के लिए आता है। इसीलिए उसे कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। और उन दिनों एक गीत बजता था, फिल्मी गाना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। मुझे वो गाना बड़ा प्रिय लगता था, लेकिन फिर ख्याल चलता था कि ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है, चाहे कहा व्यक्ति के लिए गया होगा, कहने वाले ने किन भावनाओं में कहा, परंतु किसी भी व्यक्ति जो संसारी कितना भी शक्तिशाली हो उस पर ये गाना उतर ही नहीं सकता है। ये गाना तो सागर जो है, हम सबका मालिक जो है, उस पर ही उतर सकता है, क्योंकि वही तो सब कुछ दे सकता है। तो मुझे उसमें एक जैसे पिता श्री ब्रह्मा को देखकर और उस लाइट को देखकर सिमिलैरिटी की फीलिंग्स आना, तो निश्चय होता गया कि ये वो निराकार सुप्रीम पावर ने ही ये महावाक्य इनके मुख के द्वारा उच्चारे है। और उससे मेरे जीवन के अंदर एक अलग सी शक्ति, एक अलग सा सुकून महसूस होता था। कई बार हमारे पेरेंट्स भी पूछते थे तुम क्या महसूस करती हो, क्या अनुभव करती हो, तो मैं हंसते हंसते कहती थी ये मत पूछो मेरे से, मुझे वो आकर्षण होता है, वो सुख मिलता है जो मुझे और कहीं नहीं महसूस होता है। तो मेरे पास शब्द नहीं होते थे उस समय बताने के लिए, लेकिन सब समझ जाते थे इसको कुछ विशेष अनुभूति होती है। और मेरा इंटरेस्ट जो है उन महावाक्यों को पढ़ने में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। दुनिया में तो कई सोचते हैं भगवान के कोई तब बनते हैं जब कोई दुख होता है या धोखा होता है या अशांति होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। परंतु एक प्रभु प्यार ने और जीवन की सच्चाई क्या है और भगवान कौन है, वो निराकार है, ये समझ में आता गया। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि वास्तविकता जो है वो इन ईश्वरीय महावाक्यों से आप समझ सकते हैं कि परमात्मा सर्व का पिता, वो एक सागर सुप्रीम पावर निराकार है, कोई देहधारी नहीं, और उसका कार्य इस धरा पर चल रहा है और ये सृष्टि एक सुखमय संसार सहज बन जाएगा उन ईश्वरीय महावाक्यों को जीवन में लाने से। ओम शांति।
ओम शांति। हम सबकी अति प्यारी अति स्नेही आदरणीय गुलजार दादी को आज सारे विश्व की आत्माएं याद कर रही हैं। उनकी दी हुई शिक्षाएं सदा हम सबके साथ हैं। बहुत से भाई बहन गुलजार दादी से नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं आज आपको अनुभव के साथ दादी जी की कुछ प्रेरणाओं से जो जीवन समर्पित होने में मदद मिली वह अनुभव सुनाना चाहूंगी। हम लोग जैसे साकार बाबा के साथ गुलजार दादी के साथ दिल्ली के अंदर मिलते रहते थे, और विशेष रूप से कमला नगर सेंटर जहाँ पर जगदीश भाई, गुलजार दादी और अन्य बहनें रहती थीं, तो हमें वह दिन जरूर याद है जब साकार बाबा अव्यक्त हुए तो हमारा पूरा ही परिवार, हमारी लौकिक माता जी सत्या बहन, गुप्ता जी, बड़े भाई गोपाल भाई और छह बहने अवश्य दादियों से मिलते रहते थे। तो विशेष रूप से हमने पालना गुलजार दादी की ली। तो हमको याद है हमारी माता जी को बहुत साकार बाबा के शरीर छोड़ने के पश्चात बड़ा दुख सा अनुभव होता था कि अब किससे हम मिलेंगे। मधुबन जाते थे तो साकार बाबा की पालना मिलती थी, लेकिन एक दिन कमला नगर सेंटर पर गए तो गुलजार दादी जैसे अपने कमरे में बैठी हुई थी, तो हमारी माता जी को ये अनुभव हुआ कि गुलजार दादी नहीं बैठी है लेकिन साकार बाबा बैठे हुए हैं। और अंदर से ये प्रेरणा मिली कि अभी भी बाबा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसी दिन से एक अलौकिक पालना के रूप में, साकार बाबा के रूप में गुलजार दादी के द्वारा हमारे पूरे परिवार को पालना मिली। बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा साकार बाबा का साक्षात्कार अनुभव कराया। उस समय हम कॉलेज में थे, कन्याओं की क्लास होती थी, दादियों से मिलकर टोली खाते थे। कोई विशेष दिन होता था जन्मदिन का तो दादी से टोली व सौगात गिफ्ट लेकर आती थी। विशेष रूप से मैंने दादी को देखा, बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए और मधुर मुस्कान से ही बहुत कुछ कह देती थी। वो कभी ये नहीं कहती थी कि आओ सेंटर में रहो, लेकिन अंदर की ये प्रेरणा जरूर रहती थी कि हम सब बहनें और कन्याएं जरूर सेंटर पर आकर सेवा करें। लेकिन ड्रामानुसार हमसे जो पहले तीन बहनें हैं उनकी लौकिक दुनिया में की तरह से शादी हो गई थी, और मैं भी जब पढ़ाई पढ़ती थी तो दादियों के नजदीक जाते थे लेकिन दिल नहीं होता था कि अभी समर्पण होकर सेवा करें। तो मैं भी दादी को कभी कभी कहती थी, दादी खूब पैसा कमाएंगे और यज्ञ की सेवा करेंगे। तो यही पूछती थी, अभी तुम्हारा आगे क्या प्रोग्राम है। तो ऐसे ही हमने कहा, नहीं दादी नौकरी करेंगे, आश्रम में तो धन की बहुत जरूरत है। तब दादी कहती, नौकरी टोकरी की तो गई दुनिया से, अर्थात तुम्हें धन कमाने की जरूरत नहीं है, धन कमाने के लिए भाई बहन बहुत है। ये भी महावाक्य उनका वरदान भरा हुआ, जैसे अंदर में फील हुआ कि जो मेरा एक लक्ष्य था कि खूब कमाई करके बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे, सेल हो सकती थी और बाबा के यज्ञ की सेवा करें, लेकिन दादियां उस स्थूल धन को नहीं महत्व देती थी। वो चाहती थी सबसे बड़ा धन है हमारा जीवन रूपी बाबा की शिक्षाओं भरी, शिक्षाओं से अनेक आत्मों के जीवन को भरपूर करना। और उसी प्रेरणा से मैं कहूंगी, मैं भी समर्पण तो हो गई, लेकिन फिर भी जब दादियों के साथ मैं कलकत्ता में बाबा की प्रेरणा से आई, तो कलकत्ता के अंदर आने के बाद जब दादी पहले मेले के अंदर आई थी, काली घाट में बहुत बड़ा मेला हुआ था, मनमोहिनी दीदी, बड़ी दीदी और गुलजार दादी और भी दादियां आती थीं, लेकिन उस मेले का मुझे अनुभव है कि जब झंडा उस कालीघाट मेले के अंदर लहराया गया, शायद वो फोटो भी आज भी मेरे पास है, कि दादी जब झंडा लहरा रही थी उस समय बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था, मुझे ही नहीं लेकिन और भी जो भाई बहन थे, कि गुलजार दादी नहीं लेकिन अव्यक्त बाप दादा खुद स्वयं आकर वो बाबा का झंडा लहरा रहे। तो दादी के अंदर जो विशेषता मैंने देखी कि दादी जी दृष्टि से सबको निहाल कर देते, ऐसे ही भक्ति में कहता है नजर से निहार करते हैं प्रभु, लेकिन दादी की दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि ही बहुत कुछ कह देती है। एक बार मैंने कलकत्ता के कोई सीनियर भाई थे, उनको बोला आप दिल्ली जा रहे हैं और दादी जी से जरूर पांडव भवन दिल्ली में मिल के आना। तो आप मिलकर आए तो मैंने पूछा आपने दादी से क्या लिया। दादी ने जो प्यार भरी दृष्टि दी और बहुत कुछ दृष्टि में सब कुछ समझा दिया, तो आकर बोला वेरी क्लियर विजन। तो कई बार हम मुख से बोलकर किसी को शिक्षा देते हैं, लेकिन मुझे तो अपना ये अनुभव है और सारे ही परिवार को हमेशा कहती थी हमारी मम्मी को कोई चिंता नहीं करो, बहुत सुखी परिवार है, वारिस परिवार है। हमारी बहनें आज सभी मुझे फोन करके भी बताती हैं कि दादी जी ने मुझे कहा था छोटा परिवार सुखी परिवार, बाबा के घर के हो घर में ही रह रहे हो, चाहे लौकिक में हो तो अलौकिक में ही हो, तो पूरा घर उसी रूप से चलता था। दादी ऐसे जैसे आज छोटी बहनें हम लोग चक्कर लगाते हैं तो घर में कितनी ही बार चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने का मतलब कि हमें उनके वाइब्रेशन से और छोटी छोटी शिक्षाओं से, ये कहती थी कि तुम किसके बच्चे हो, ये नशा है, जब अगर ये नशा होगा तो उस नशे में रहने वाली आत्मा का रॉयल्टी क्या होगी, वो और कुछ चिंता नहीं करेगा। सदैव बाबा के इस निश्चय और नशे में रहो कि हम भगवान के बच्चे हैं, और साथ साथ कभी व्यर्थ के बारे में सोचना भी नहीं, व्यर्थ सोचना भी व्यर्थ है, कभी किसी के स्वभाव संस्कार में नहीं आना। तो इस तरह की छोटी छोटी शिक्षाएं समय प्रति समय जो दूसरों को भी दे रही थी या हम सुनते थे, तो अंदर में लगता था कि इनडायरेक्ट हमें भी पहले से ही एक प्रेरणा मिल गई कि कभी भी किसी के संस्कार स्वभाव में आकर अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, नहीं व्यर्थ सोचने से व्यर्थ समय भी जाता है। इसी रूप से दादी जी को मैंने अभी थोड़े समय पहले कलकत्ता में फिर एक मेला हुआ था, सब दादियां आई थी 2003 में, तो बड़ी दादी को मैंने एक स्थान पर चलने के लिए कहा कि बड़ा बाबा का स्थान है वहां पर आप दादी चलिए। तो दादी जी जैसे एक छोटे बहन के निमंत्रण से समय नहीं होते हुए भी बड़े दिल से कहा नहीं मैं जरूर आऊंगी। और उसी समय मैंने देखा कि जैसे बड़े होते हैं ना किसी का दिल रखना, समय नहीं है लेकिन फिर भी दादी ने उस स्थान पर चक्कर लगाया। तो दादी एक सखी के रूप में, एक लौकिक बड़ी बहन के रूप में हमने देखा, जैसे कोई भी मन के अंदर संकल्प भी आए ना उसको पूछने के लिए भी हम जाएंगे तो उसका जवाब भी इतना अच्छा मिलता था। एक बार मैंने किसी भाई के बारे में कुछ पूछा था, दादी ये भाई सब कुछ समर्पण करना चाहता है तो क्या करना है, क्योंकि मैं दादी जी से नजदीक थी, निर्मल शांता दीदी के भी बहुत नजदीक थी शुरू से। तो गुलजार दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, अरे तुम्हारे पास तो निर्मल शांता दादी बैठी है ना, तुम उनसे पूछो। तो कितनी कायदे वाली बात बताई कि मेरे पास साथ में रहने वाली निर्मल शांता दीदी बाबा की लड़की रहती है, तो तुम उससे पूछो, वो तुम्हें बहुत अच्छी राय देंगी, तुम हमेशा तो उनके साथ रहते हो। तो मैं तो इजी नेचर होने के कारण दादी से बहुत सहज रीति से पूछ लिया। ऐसे कई बार दिल्ली से ट्रेन के अंदर हम जाते थे, ट्रेन में जब जाती थी तो दादी की एक्टिविटी को मैं ऑब्जर्व करती, क्या कर रही है दादी। और ये मैं बताऊं थोड़े दिन पहले मैं अहमदाबाद में भी गई तो यही बात मैंने दादी जी से फिर पूछा। कई बार सोचते थे ना दादी जी कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन एक ही बार बड़ी दादियों से जब हम रिपीट कराते हैं तो हमने देखा कि वो सुनती भी हैं, समझती भी हैं, लेकिन बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करती। तो फिर भी मैंने बहनों के कहने सिर्फ दादी जी से पूछा, दादी जी आपके साथ हम दिल्ली से मजमून जाते थे तो ऐसा भी एक पार्ट था, तो मैंने जो देखा था कि छोटे छोटे प्लास्टिक में हम लोग जो थोड़ी टोली रख देते हैं ना और फिर खाते तो उसको फेंक देते थे, लेकिन दादी ने बड़े प्यार से उस टोली को थैली खाली की फिर उसको सफा करके लपेट के साथ में रख दिया। तो ये मैंने देखने के बाद पूछा दादी ये क्यों करते, बोला वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक अनामी में रहना चाहिए, जैसे नहीं स्लोगन है एक नामी रहो एक अनामी। तो यही जो मेरे साथ जीवन में घटना मैंने देखी थी जब मैं कॉलेज में गए समय में दिल्ली से मधुबन गई और अब जब दादी थोड़े समय पहले हॉस्पिटल के समय अहमदाबाद में थी तो मैंने वही कहानी ऐसे ही दादी को सुनाई तो दादी ने वही बात बोला कि नहीं उस समय एक नामी एका नामी में थे। तो हम देखते कि बड़ी दादियां जब बड़ी एज हो जाती है तो कई बार हम सोचते हैं कि वो हमें रेस्पॉन्ड नहीं दे रही हैं, लेकिन मैंने ये फील सब दादियों के साथ किया है कि वह सब समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एक ही बात को वो बार बार रिपीट नहीं करते। ये मेरा सुनाने का भाव ये है कि दादी जैसे एक फरिश्ता स्वरूप में अव्यक्त स्थिति में कर्मातीत की स्थिति में उनको मैंने हमेशा फील किया, क्योंकि जब मधुबन में मीटिंग होती थी तब भी मैं ये फील करती थी सब दादियों को देखते हुए कि दादी बड़ी न्यारी प्यारी बैठी हैं। जब उन्हें बोलना होता था, जो सुनाना होता था टू दी पॉइंट्स वो सुनाती थी, लेकिन उसके अलावा अगर वो सुन भी रही हैं, मीटिंग को सुन भी रही हैं, लेकिन सुनते हुए भी उनकी स्टेज को मैंने हमेशा देखा कि वह वहां से डिटैच है। साकार बाबा को इस रूप में देखा नहीं, बाबा को देखा बहुत छोटे थे, लेकिन बाबा के लिए सब कहते थे बाबा कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए वहां से डिटैच है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत गुलजार दादी के साथ ये बहुत अनुभव रहा, मैं बहुत ध्यान से उनको देखती रहती थी दूर बैठे भी कि ऐसा क्यों अनुभव होता है कि बैठे हुए भी दादी का ऐसा फील होता वो यहाँ नहीं है, जिसको कहते उपराम स्टेज, फरिश्ता स्वरूप स्टेज। इसी रूप से कई बार हम लोगों के प्रश्न भी होते थे बड़ी दादियों से कि क्यों श्री बाबा ने बाबा के जाने के पश्चात अपनी आदरणीय गुलजार दादी को अपना माध्यम बनाया, तो उनकी विशेषता थी, बड़ी विशेषता क्या थी, किसी की भी बात को अपने दिल पर नहीं रखना। कोई भी समाचार कुछ भी यज्ञ का एक दूसरे को हम सब सुनाते हैं, लेकिन दादी का सुनना और समाना और समाने के साथ जो जरूरत है हम सबको उसी अनुसार शिक्षा सावधानी या गाइडेंस दे देना। मुझे याद है गोपाल भाई भी कई बार हमको उनकी बातें सुनाते थे, सुनाते भी हैं कि दादी के साथ वो सबसे अधिक नजदीक पांडा में रहे तो हमेशा कहते थे कि दादी कहती थी देखो कोई गला सड़ा आम देगा आपको तो क्या आप पॉकेट में रखोगे, रखोगे तो आपकी ही पॉकेट खराब हो जाएगी। तो इसलिए कोई व्यर्थ की इधर उधर की बातें सुनाते तो क्या मन में रखोगे, मन को खराब क्यों करेंगे, क्योंकि मन को अपना स्वच्छ पवित्र रखना है। जिस मन मंदिर के अंदर ये आत्मा पवित्र बनकर देव आत्मा बन रही है तो उसको स्वच्छ रखने के लिए कोई भी व्यर्थ बातें सुनाए उसको दिल से कभी भी सुनना नहीं है। यही लक्ष्य रखकर जब हम चलते हैं तो हमारा मन स्वच्छ रहता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारी दादी जी ने जो भी शिक्षाएं हमें दी हैं, जो भी क्लासेज आजकल भी टीवी के माध्यम से आ रहे हैं, बड़े ध्यान से आप सभी सुने, उनके प्रेरणादायी जीवन से हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, ना केवल आज के दिन लेकिन विशेष बीच बीच में समय निकालकर इस शरीर से न्यारे होकर अशरीरी स्टेज का अनुभव करना, साथ साथ उपराम स्टेज का अनुभव करना। ये दादी का विशेष अनुभव के आधार से मैंने अनुभव किया और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये प्रैक्टिस करने का लक्ष्य भी रखते हैं कि जब दादी जी ने इसी स्टेज को प्राप्त किया कि अभी भी मैं यही सोचती थी दादी तो फरिश्ता स्वरूप में कर्मातीत स्टेज में बैठी हैं और उसी स्टेज में रहकर शांति में रहकर हमको शांति का पाठ पढ़ाकर अपने घर शांति धाम में पहुंचाने का विशेष संदेश देकर गई हैं। तो हमारा भी लक्ष्य यही रहे, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। दादी जैसे बहुत कम बोलती थी, बहुत मधुर मुस्कान से, दृष्टि से सब कुछ कह देती थी, उसी रूप से हम विशेष रूप से उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखें। ओम शांति।